शुभ प्रातः। यहाँ इस प्रातः आकर आनंदित हूँ और हम प्रसन्न हैं इस महान संगति और ये पुराने विश्वास के गीतों में आनंद ले रहे हैं। हमें ये अच्छा लगता है कि आपको आमीन कोरस वो यही है आमीन। देखिए उसके पास कहने को अंतिम शब्द। मैं वहाँ बैठा हुआ अपने पुराने मित्रों से बातें कर रहा था भाई ब्राउन से, जबकि गाना चल रहा था और उसने कहा भाई ब्रनम मैंने कल तक कभी नहीं देखा था जिस विषय में आप बातें कर रहे थे। उसने कहा यदि लोग उसे समझ सकें जिस विषय में आप बातें कर रहे थे तो कहा तो मार्ग में से हर प्रकार की रुकावट दूर हो जाएगी। ये बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक बात है यदि आप इसे पकड़ सकें और इसे पकड़ें, समझे। अपने छोटे मित्र अर्नी फैंडलर से बात करते हुए मैं सोचता हूँ कि आप में से कुछ जो संचार तंत्र पे होंगे अर्नी की याद होगी कि उसका कैसे मत परिवर्तन हुआ, कैसे उसकी अगुवाई प्रभु तक हुई। वो अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलता था। मैं उससे चाहूंगा कि आकर एक शब्द कहे और वो अपने वीज और वो सबको मिला देता था। वो मुझसे पूछ रहा था यदि मुझे शॉनो का समय याद हो जहां वो रहता है, वहां एक व्यक्ति ठीक सभा में मर गया था, अपनी कुर्सी में मर गया, लूथरन था और हम सब शांत थे। उसके ऊपर परमेश्वर का वचन बोला गया, वो वापस जीवित हो गया, वो दूसरे मार्ग से आया, वे उस पर कभी नहीं आए। हम चाहते थे कि फिर वापस आए और मैं समझ गया कि इस प्रातः फ्रांस में 2000 से भी ज्यादा फ्रांसीसी फ्रांस में बहुत दिनों से उपवास में हैं कि हम आएंगे और फ्रांस में फ्रांसीसी में संदेश देंगे। सारा प्रोटेस्टेंट राष्ट्र, फ्रांस देश का प्रोटेस्टेंट वाला भाग, ये अब खिलना आरंभ हुआ है। भूसी हट रही है ताकि गेहूं वहां अब रखा जा सके, समझे। इसलिए बस अब श्रद्धा में रहें, प्रार्थना करते रहें, समझे। स्मरण रहे वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं अपनी सामर्थ को नया करते हैं। अब वहां मैं बूढ़ा हो रहा हूं और मैंने सोचा मैं क्या दूसरी बेदारी होगी, मैं दूसरी बार देखूंगा। और बस स्मरण रखें पश्चिम से सफेद घोड़े का सवार आएगा और हम इस पगडंडी पर फिर चलेंगे। ये ठीक बात है, जल्द ही जैसे हम लगभग तैयार हैं, ये प्रतिज्ञा है। आप देखिए अब मैं भाई लियो से कहना चाहता हूँ। मैं पिछली रात्रि भाई वुड के विषय में बातें कर रहा था। भाई लियो यदि आप और वो छोटा झुंड जो इस प्रातः संचार व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, बहन मर्सियर आपके पिता यहाँ पर हैं, मैंने उन्हें पिछली रात्रि देखा था, वे यहीं कहीं इस भवन में हैं और वे बहुत अच्छे और बढ़िया हैं। वो प्रातः जब वे आराधनालय में चंगे हुए थे वहाँ दो विशेष कैंसर के मामले थे, वास्तव में मर रहे थे और वे दोनों चंगे हो गए और उनके बूढ़े पिता हृदय घात में थे, परमेश्वर की महिमा में लाए गए और वो यहाँ कहीं सभा में हैं। मैं उन्हें अब भीड़ में नहीं देख सकता परंतु पिछली रात्रि वे यहाँ थे। आप सबको जो सारे राष्ट्र में हैं शुभकामनाएं। यहाँ इस शानदार स्थान में, यहाँ शेयरपोर्ट में, लाइफ टबरनिकल में, संडे स्कूल में खचाखच भीड़ के साथ, आप जानते हैं यदि मैं शेयरपोर्ट में रहा हूँ किसी के विरोध में कुछ नहीं कह रहा हूँ, परंतु ये यही वो स्थान होगा ठीक यहाँ लाइफ टबरनिकल के आराधनालय में आता है। ये नामधारी नहीं है दी लाइफ टबरनिकल, आज एक अंतर नामधारी आराधनालय है। वे नामधारी से बाहर निकल कर आए हैं क्योंकि इन्होंने मुझे स्वीकार किया है और ये संदेश जो मैं प्रचार करता हूँ। भाई जैक मूर मेरे भाई और मित्र, उन्हें नामधारियों में से निकाला क्योंकि वे मुझसे संबंधित हैं, इसलिए मैं सोचता हूँ वे श्रेय के लिए पात्र हैं। ये ठीक बात है, परमेश्वर उन्हें आशीष दे और उनके हाथों को प्रार्थना में उठाए रखते हैं और उनके साथ विश्वास रखते हैं। और अब बहन मूर मैं उन्हें कहीं नहीं देखता हूँ, वो हाँ यहाँ पीछे वे आज वहाँ बैठी हुई हैं, छोटी लड़की सी दिखाई पड़ रही थी, नए नए कपड़े, ईस्टर की सी वेशभूषा दिखी और ये ऐसे दिखाई पड़े। भाई जैक भी उन्हें स्वयं नहीं जान पाए। आप बहन मूर निश्चय ही हम कुमारी एनाजीन और डॉन की घटी अनुभव करते हैं और वे सब भाई नोलन से मिलकर प्रसन्न हैं। ये भी यहाँ एक हम में से जुड़े हुए हैं। और भाई अर्नी मैंने कल उनसे पूछा यदि वो आमीन गाऊं, मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया है, मैंने इसे बार बार सुनकर याद कर लिया है आमीन। मैं सोचता हूँ उसकी आवाज़ इसके लिए है, किसी को भी पछाड़ देगा। और छोटी जूड़ी मैंने ध्यान दिया कि वे दो भाई बहन जैसे लगते हैं, क्या नहीं, वे पति और पत्नी हैं। उन दोनों को देखें, क्यों वे ठीक नहीं लगते, देखा, वे वास्तव में सुंदर जोड़ा है, मैं उनसे प्रेम करता हूँ। यही आप जानते हैं, यही है भाई पामर जिन्होंने हाल ही में सोने की सीढ़ी चढ़ी है, ये उनकी पुत्री और दामाद हैं और ये निश्चय ही उनके बालक को प्रशिक्षित करने में उनका योगदान है। और दूसरे ने भी पाया, विवाहित सेवकों ने भी, और ये सुसमाचार फैलाने वाले हैं और उनका क्षेत्र दूसरे, इसलिए ये बहुत ही अच्छा। मैंने बहन पामर को नहीं देखा। वास्तव में मैं नहीं जानता कि मैं यदि उनको देखूं तो जान पाऊंगा या नहीं। संभव है वो यहीं कहीं सभा में पीछे, वहां पीछे। बहन पामर, परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरा हृदय धड़कता है जब मैं इस पर सोचता हूं, भाई पामर तब तक पायदान चढ़े जब तक मुझे नहीं मिला कि वे चले गए थे। मैं बस इसका विश्वास नहीं कर सका। बिली ने मुझे बुलाया और किसी ने पकड़े रखा और वे जान गए हम बहुत ही प्यारे मित्र थे, और ये जानकर कि वे चले गए, ये वास्तव में हिलाने वाला है। परंतु हम सबको जाना है, कोई मतलब नहीं हम कौन हैं, क्या हैं, हमें एक एक करके जाना है। परंतु केवल एक बात है, हम सारे मामले का सारांश सुने, परमेश्वर से डरें और उसकी आज्ञाओं को माने, क्योंकि मनुष्य का यही कर्तव्य है। सबोपदेश 12। अब मेरे पास संडे स्कूल के पाठ के लिए बहुत अधिक समय नहीं है और मेरा गला खराब है। कहूँ भाई पेरीग्रीन ने शानदार कार्य किया। पिछली रात्रि उसने मुझे कहते सुना, मैंने अपनी बालों वाली टोपी खो दी जो मुझे उसने वहाँ बुलाया कि कोई मेरे लिए जल्दी ले आए। मैंने कहा आपको बहुत देर हो गई, मेरा गला पहले ही खराब हो गया। मैंने वर्षों से यत्न किया कि कुछ पूर्ति के लिए ढूंढूं, परंतु जब ये मुझे मिला इसने ये ठीक कर दिया, परंतु इस बार मैं इसे भूल गया, इसलिए मेरा गला थोड़ा खराब है। इसलिए मुझे आप बोलने में सहन करें यदि आप करेंगे तो। अब कितने संडे स्कूल को पसंद करते हैं? ओ प्रभु, ये ठीक बात है, ये अच्छी बात है कि आप अपने बालकों को भेजते हैं। नहीं, मुझे इसे सही करने दें कि एक अच्छी बात है कि अपने बालकों को लाएं। ये ठीक बात है, अपने बालकों को लाते हैं, आप भी आते हैं। कितने जानते हैं कि पहले हमारा संडे स्कूल कहाँ से निकला, ये कहाँ से आरंभ हुआ था? इंग्लैंड से। पहले ये क्या कहलाया? रैगेड स्कूल। ये ठीक बात है, रैगेड स्कूल कहलाया। जैसे कि मैं उस व्यक्ति का नाम भूल गया जिसने इसे स्थापित किया, उसका क्या नाम था? ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक बात है। और उसने गलियों से छोटे बालकों को पकड़ा, फटीचर थे और जाने के लिए कोई स्थान नहीं था और बहुत खराब। वो उन्हें लेकर आया और उन्हें बाइबिल के पाठ पढ़ाने आरंभ किए, और ये कलीसिया की महानतम व्यवस्था बन गया। लगभग आज संडे स्कूल जाना अच्छा है, निश्चय ही आए और अपने बालकों को लाए। मैं सोचता हूँ आराधनालय के पास अध्यापक, अच्छे कमरे, आयु वाले और आदि आदि हैं, और आप नए मत परिवर्तक जो अभी मसीह के पास आए हैं, संदेश पर चल रहे हैं, यहाँ लाइव आराधनालय में आए हैं, और वे आपका भला करेंगे। अब आज रात्रि हम पुराने रीति की प्रार्थना पंक्ति लेंगे। हम बस अब बीमारों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं जैसा हम करते थे। भाई जैक और भाई ब्राउन, मुझे स्मरण है भाई ब्राउन को देखते हुए जो प्रार्थना पत्रों को देने का यत्न करते थे, और कैसे स्वयं एक सेवक होने के नाते, और उन दिनों में एक संस्था में जो हम उन्होंने उन पर जोर डाला, आप जानते हैं मैं उनका आपका भाई हूं, और वे बातें आप जानते हैं, आपको मुझे वहां लेना था। और निश्चय ही उनका कठिन समय था, परंतु जितने सच्चे हो सकते थे सच्चे थे। भाई ब्राउन अच्छे व्यक्ति हैं और इसलिए हम उनसे प्रेम करते हैं। और जैसा मैं हम सबको देखता हूँ, हम तीनों बूढ़ी अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, अंत की ओर। ये बहुत दुख की बात होगी यदि महान बातों को हम अपने अंदर स्थान ना दें जो कि हम जानते हैं सत्य है। हम इन्हीं किन्हीं दिनों में वापस जाने के लिए तैयार हैं, वापस अपनी युवावस्था में फिर से, कि कभी नहीं हमारी देह बदल गई, उसके स्वरूप हो गई कि खड़े हों। क्योंकि जब ये पृथ्वी का हमारा डेरा गिराया जाएगा तो एक पहले ही प्रतीक्षा कर रहा है। प्रिय मित्रों, इसका धन्यवाद वाला भाग कि प्रिय प्रभु यीशु, आप जो मुझ पर विश्वास करते हैं, आपको सत्य बताता हूँ कि प्रिय प्रभु यीशु एक प्रातः लगभग 8 बजे मुझे वो देश देखने दिया। अब ये दर्शन नहीं था, परंतु मैं ये नहीं कहना चाहता, ये जो भी था ये ऐसे ही वास्तविक था जैसे अब मैं यहाँ आपसे बोल रहा हूँ। अब मैंने उन लोगों के मुंह देखे और मैं उन्हें पहचान सकता था, वे फिर से युवा हो गए थे। वे ऐसे ही वास्तविक थे जैसे मैंने उनके हाथ आदि पकड़े, ऐसे ही वास्तविक जैसे। और इसने मेरी सहायता की, क्योंकि मेरा अपना विचार हुआ करता था जब एक व्यक्ति मर गया तो उनका प्राण चला गया, परंतु जब उसने मुझे इसका उल्लेख किया कि यदि ये पृथ्वी का डेरा हमारा रहने का स्थान, तो हमारे पास एक और है, समझे, और हमारे पास हर चीज तीन में है कि सिद्ध बने, समझे। और यहाँ एक देह है, फिर एक देह वहाँ है जो कि स्वर्गीय देह है, और फिर पुनरुत्थान में महिमामय देह। देखिए, ये सब पूरा करता है, समझे। इसलिए ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई विचार नहीं है, ये कोई आत्मा नहीं, ये स्त्री पुरुष आपके समान, बिल्कुल ठीक। और फिर वर्षों पहले मैंने नष्ट हुओं का क्षेत्र देखा और वहाँ था। मित्रों, मैं आपको बताता हूँ, एक बूढ़े के समान मैं आपको समझा दूँ, राष्ट्र में इस प्रातः मैं उस स्थान को कभी नहीं देखना चाहता। कोई विधि नहीं है कि मैं कर सकूं। यदि मैं ब्रश के साथ एक कलाकार होता, मैं चित्र नहीं रंग सका। एक सेवक के समान मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता। नरक के विषय में बात करते हैं कि जलने वाला स्थान है, ये उससे करोड़ों गुना खराब है। वो भयानकताएं जो उसमें होती हैं, और स्वर्ग या ये स्थान जहाँ कहीं ये था, मैं नहीं जानता उसे क्या कहूँ। उसने इसका उल्लेख वहाँ प्राण वेदी के नीचे के समान किया, परंतु जब ये था, मैंने कभी नहीं, कोई विधि नहीं है कि व्याख्या करूं कि कितना महान है वहाँ। अब आपको केवल मेरे शब्द लेने होंगे, मैं मनुष्य मात्र, समझे? परंतु ये दर्शन सदा घटित हुए, जैसे मैंने आपको बताया, और आप जानते हैं उनमें से प्रत्येक वास्तविक था, ये भी सत्य है। आप जो भी करें, यदि आप हर चीज खो दें, स्वास्थ्य, सामर्थ्य, आपकी दृष्टि, जो भी हो, इसे ना चूकें, उसके साथ किसी की तुलना नहीं। ये अंग्रेजी भाषा में कोई शब्द नहीं है जो मैं जानता हूँ कि उसे प्रकट करूँ। यदि मैं कहूँ सिद्ध, तो ये उससे बढ़कर, बहुत शानदार, तो ये उससे बढ़कर चरम, कोई शब्द नहीं है जो मुझे मालूम हो कि इसे प्रकट करूं, क्योंकि ये ऐसा था। और फिर ये सोचकर कि ये अभी इसका अंत नहीं है, मैंने सोचा मैं डरा हुआ हूं कि इस पर आऊं। मैंने कहा क्या आप खाते हैं? कहा यहाँ नहीं, हम यहाँ नहीं खाते, परंतु जब हम पृथ्वी पर वापस जाएंगे, हम देह पाएंगे कि उसमें खाएं। अच्छा, मैं उन्हें अनुभव कर सकता था, वे ऐसे ही थे, समझे? और वे, मैंने कहा अच्छा आप, ओ हाँ, उनके पास देह है, ना कि कल्पित, ये एक देह है, हम एक दूसरे को जानते हैं, वे सब मुझे जानते थे, मेरे गले लग रहे थे, उनमें से लाखों। और मैंने कहा ठीक है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ जो मुझे यहाँ लाया है। ये कहाँ? तुम उससे अभी नहीं देख सकते, आपको प्रतीक्षा करनी होगी। मैंने कहा क्यों आपने मुझे यहाँ ऊपर बैठाया है, यहाँ ऊपर? कहा तुम जीवन में अगुआ थे। मैंने कहा आपका क्या अर्थ है, ये सब ब्रणम है? उसने कहा नहीं, ये सब तुम्हारे मत परिवर्तक मसीह में है, समझे? मैंने चारों ओर देखा, और फिर सारी कठिन रात्रियां, परीक्षाएं बीत गईं। जब मैं उनके मुखों को देख सका, एक युवा महिला वहां पहुंची, स्त्रियों में से बहुत सुंदर, और उसने अपने हाथ मेरे चारों ओर डाले, कहा बहुमूल्य भाई। और जब वो चली गई, अब वो एक महिला थी इस प्रकार, परंतु वहां कभी पाप ना होगा। देखिए, वहाँ हमारी ग्रंथियाँ बदल गईं, वहाँ और बालक उत्पन्न ना होंगे, समझे? देखा, सब एक सा। अंतर क्या होता है? संवेदना। यही कारण है मैं फर्श पर नाचने में विश्वास नहीं करता। कोई मनुष्य नहीं, मैं परमेश्वर और मेरी बाइबल के सामने हूँ। मैं पवित्र रहा हूँ अपने जीवन में को बिताते हुए। जब मैं छोटा लड़का था, अपनी सारी युवावस्था में, कोई भी लड़की जिसके साथ मैं बाहर गया हूँ, मैं न्याय में उसके पीछे साथ साथ जा सकता हूँ, समझे? परंतु कोई मनुष्य नहीं है, मैं चिंता नहीं करता कि आप कौन हैं। किसी स्त्री को आपके स्वयं पास से गले मिलने दें, स्त्री हो। यदि आप सही स्वस्थ व्यक्ति हैं, तो उत्तेजना होगी। परंतु ये वहाँ नहीं था, वहाँ कोई ग्रंथि नहीं थी, वे सारी वही ग्रंथियाँ थी, समझे? बस पवित्र, बिना मिलावट किया हुआ बहन और भाई का प्रेम आपके लिए इससे भी अधिक होगा, यहाँ तक कि आपके अपनी छोटी पुत्री को भी गले लगाने से, समझे? आपकी अपनी पुत्री तो भी वो बनी है, वो नारी है और आप पुरुष हैं। देखिए, ये कुछ उत्पन्न कर सकता है, परंतु ये वहाँ नहीं कर सकता। पाप समाप्त हो गया, समझे? वास्तव में वास्तविक पवित्र प्रेम। मैंने उस महिला को देखा वहाँ, प्रतीत हुआ वे वहाँ लाखों हैं, उन सबके लंबे बाल हैं और नीचे तक श्वेत वस्त्र। और जो मुझसे बातें कर रहा था बोला, तुम इसे नहीं पहचानते? मैंने कहा नहीं। कहा वो अपने 90 के दशक में थी जब आपने उसकी मसीह तक अगुवाई की। आश्चर्यजनक अनुग्रह, कितनी मीठी आवाज, समझे? कोई विधि नहीं है कि कभी उसकी व्याख्या की जाए कि वो क्या है। यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं, तो बस मेरे शब्द ले लें, बनाने के लिए निश्चित आपके पीछे संसार का हर पुल तोड़ देता है। मैं विश्वास करता हूं कि कलीसिया ने संदेश सुनना आरंभ कर दिया है और उसे समझना आरंभ कर दिया है। परंतु मित्रों सुनो, हमें पुत्र की उपस्थिति में रखना है, हमें पक कर तैयार होना है। हमारा विश्वास पका नहीं है। बुद्धि से हम संदेश को सुनते हैं और परमेश्वर ने हमें दिया है, उन चिन्हों को देख रहे हैं जो उसने हमें दिखाए और बाइबल से सिद्ध किया कि ये है। परंतु वो कलीसिया के लिए कितना आवश्यक है कि उसकी उपस्थिति में रहे, जब तक कि ये कोमल ना हो जाए, आप जानते हैं, और आत्मा में सुंदर हो जाए, ताकि ये नहला दे। कभी कभी संदेश में बोलते हुए आप क्रोध में हो जाते हैं, इस प्रकार से तोड़ देते हैं, क्योंकि आपको कील को मोड़ना होता है ताकि आप पकड़ सकें। परंतु जब कलीसिया एक बार पकड़ लेती है तो चुने हुए बाहर बुलाए गए और अलग हो गए, तब परमेश्वर की उपस्थिति में। मैं जानता हूँ ये कुछ लोगों के समान था वहाँ जब स्वर्गारोहण होता है। इस प्रातः मैं स्वर्गारोहण पर बोलने जा रहा हूँ, परंतु बोलने के लिए मेरी आवाज पर्याप्त नहीं है, इसलिए थोड़े समय के लिए मुझे सहन करें, क्यों मैं इस विषय पर बोलना चाहता हूँ। परमेश्वर का दिया गया केवल एक आराधना स्थान, अब ये बड़ा महान विषय है, इसलिए अब हम प्रार्थना करें। और सारे राष्ट्र में इस प्रातः आप जहाँ भी हैं, कुछ क्षणों के लिए अपने सिरों को झुका लें। अब वास्तविक श्रद्धा में हम परमेश्वर के वचन पर आ रहे हैं, जो परमेश्वर अक्षर के रूप में है। इस पुस्तक का महान लेखक, ये एक बीज है, हमें सिखाया गया है कि बोने वाले ने बोया, लेखक ने ऐसा कहा। अब हम ये अनुभव करते हैं कि बीज बढ़ेगा यदि वो सही प्रकार की भूमि में है। इसलिए पिता, क्या आप इस प्रातः सारी रुकावटें और कांटे और अविश्वास और संदेह वाले विचार हमारे हृदय से निकाल दें, ताकि परमेश्वर का वचन स्वतंत्रता से बढ़ सके, हमारे हृदय की आत्मा के द्वारा सींचा जाए, ताकि हम परमेश्वर के लोग हो सकें। पिता इसे प्रदान करें, ये हमारे हृदयों का है। केवल हम ही नहीं जिसने इसे पहचाना है, बाहर भी दूसरे समस्त राष्ट्र में प्रत्येक का हृदय प्रेम और कोमलता से जल रहा है। जाकर उन खोए भाई बहनों को जीतेगा, आज इसे स्वीकार करें। परमेश्वर, हम संपूर्ण रीति से आपकी ओर ताक रहे हैं, क्योंकि आप हमारे मार्गदर्शक हैं और हमारे प्रभु, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं आप आज अपने वचन में हमारी अगुवाई करेंगे और हमें अपनी आशीष देंगे। अपने अनुग्रह में होते हुए और तेरे नाम में हम इसे मांगते हैं, आमीन। अब हम अपने पाठ के लिए लेते हैं। मैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक में से पढ़ना चाहता हूँ, पुराना नियम। पवित्र वचन को व्यवस्थित करने हेतु मेरे पास कुछ लेख हैं। भाई वायल के साथ नाश्ता करने के पश्चात मैंने इसे जल्दी जल्दी लिखा है। मैं वहाँ उस होटल पर उस व्यक्ति को भी कभी धन्यवाद नहीं दे पाया, उस रात्रि उस रेस्टोरेंट में जिसने हमारे रात्रि भोज का भुगतान किया। पत्नी और मैं और मेरी छोटी लड़की वहाँ थे, और जब मैं अपना भुगतान करने गया, किसी ने भुगतान कर दिया। ये जो कोई भी था, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, कहा वो व्यक्ति जो अंत में कुर्सी पर बैठा था। वहाँ पूरा झुंड था जो हम जानते हैं। अब मैं एक प्रकार का किकापू ऐसा ही कुछ है, वहाँ जगह है, वो जलपान ग्रह जहाँ हम थे। धन्यवाद जिस किसी ने भी ये किया है, आप में से प्रत्येक को परमेश्वर आशीष दे। अब व्यवस्था विवरण के 16वें अध्याय में ये पर्व मनाना, इसलिए हम पहले कुछ पद पढ़ना चाहते हैं, पहले 4 या 5, 6 पद यहाँ पर।
The Lord thy God brought thee forth out of Egypt by night. Thou shalt therefore sacrifice the Passover.
Abib, इसका अर्थ अप्रैल है। अभी महीने को स्मरण करके अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह का पर्व मनाना, क्योंकि अभी महीने में तेरा परमेश्वर यहोवा रात को तुझे मिस्र से निकाल लाया। इसलिए जो स्थान यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने को चुन लेगा, वहीं अपने परमेश्वर यहोवा के लिए भेड़ बकरियों और गाय बैल फसा करके बलि करना। उसके संग कोई खमीरी वस्तु न खाना, 7 दिन तक अखमीरी रोटी जो दुख की रोटी है खाया करना, क्योंकि तू मिस्र देश से उतावली करके निकला था। इसी रीति से तुझको मिस्र देश से निकलने का दिन जीवन भर स्मरण रहेगा। 7 दिन तक तेरे सारे देश में तेरे पास कहीं खमीर देखने में भी ना आए, और जो पशु तू पहले दिन की संध्या को बलि करे, उसके मांस में से कुछ बेहान तक रहने ना पाए। फसह को अपनी किसी फाटक के भीतर जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दे बलि ना करना। जो स्थान तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने के लिए चुन ले, केवल वहीं वर्ष के उसी समय जिसमें तू निकला था, अर्थात सूर्य डूबने पर संध्या काल को फसह का पशु बलि करना। अब प्रभु अपनी आशीषें उसके वचन पढ़े जाने पर दे। अब क्या माइक में घर हो रही है? पिछली रात्रि मैंने सुना ये था, क्या आप ठीक सुन सकते हैं सारे में? आप नहीं सुन सकते, ये ठीक है क्या? ये और ठीक है, इस तरह से नीचे करके बोल रहा था। मेरा गला भी थोड़ा खरखरा रहा है, इसी उद्देश्य से मैं इस प्रातः समीप खड़ा हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि भाई पैरी वहाँ बाहर जा सकते हैं। क्या आप सुन सकते हैं अब? ठीक है, मैं सोचता हूँ उन्होंने इसे रखा है। अब वो बात जिस विषय में मैं इस प्रातः बोलना चाह रहा हूँ वो कि परमेश्वर का केवल एक स्थान है जहाँ उपासक परमेश्वर से मिल सकता है, केवल एक स्थान। युगों से बहुतों ने परमेश्वर के इस गुप्त स्थान को ढूंढा, सारे युगों में, यहाँ तक कि अय्यूब ने भी जानना चाहा कि वो कहाँ रहता है, यदि मैं उसके घर को जा पाऊँ और उसके द्वार को खटखटाऊँ। अय्यूब परमेश्वर का निवास स्थान खोजना चाहता था, क्योंकि वहाँ परमेश्वर और उसका परिवार ने साथ आराधना की। जैसे कल प्रातः के संदेश में हमने पाया, संभावना है व्यक्ति परमेश्वर की आराधना व्यर्थ में करे, निष्कपट आराधना से। परमेश्वर ने ये सब हमारे लिए तय कर दिया है, परंतु बात यह है हमें ये खोजना है कि वे कहाँ हैं। पौलुस ने तिमोथियस को बताया कि ढूंढे और समय में और असमय वचन देने को तैयार रहे, या वो आशा जो उसके अंदर थी। अब ये सारी बातें वहाँ हैं और हम पाते हैं। कभी कभी मैं शेरपोर्ट आना चाहता हूँ, जहाँ हम 2 या 3 सप्ताह बस 30 मिनट लेंगे और इस पर सिखाएंगे। देखिए, बस वचन में टिके रहें, ये गुप्त लेखांश जहाँ हम पा सकते हैं कि इसमें कैसे जाएं। और आप ध्यान दें, आप परमेश्वर के निर्देशन का पालन करें, हर दरवाजे की एक ही चाबी है, ये ठीक बात है, और कोई दूसरी चाबी नहीं, कोई मतलब नहीं वो कितनी समान दिखती है। परमेश्वर की कोई मास्टर चाबी नहीं, बस एक चाबी, और अब और आपको वही चाबी लेनी है या फिर दरवाजा नहीं खुलेगा। कोई मतलब नहीं आप कितने निष्कपट हैं, आप फिर भी दरवाजा नहीं खोल सकते। अब कितनी बीते कल को नाश्ते पर थे उस प्रातः, ठीक है, मैं सोचता हूँ अधिकांश, कम से कम 90% आप में से या अधिक। इसकी भूमिका में जो मैं कहने जा रहा हूँ, दाऊद अभिषिक्त राजा था, परमेश्वर से अभिषिक्त महान राजा जो कभी इज़राइल में हुआ, सिवाय यीशु को छोड़, जो कि परमेश्वर है अभिषिक्त। दाऊद उसका पुत्र या यीशु था, दाऊद का पुत्र वंशावली के आधार पर शरीर में, और उसे दाऊद के सिंहासन पर बैठना है, फिर वारिसाना, राजकुमार सदा वारिसाना लेता है, राजा का सिंहासन। अब ध्यान दें, दाऊद अभिषेक होने के नाते, यद्यपि जो उसका अभिषेक हुआ वो उस अभिषेक के साथ परमेश्वर की इच्छा से बाहर चला गया, और सारे लोग पवित्र वचन की लीक को ना लेते हुए था, या प्रकाशन की कुंजी, वे सब भी अभिषेक हैं, वे सब एक साथ चिल्ला और परमेश्वर की महिमा कर रहे थे उस चीज के लिए जो ठीक दिखाई पड़ती है, परमेश्वर के घर में परमेश्वर का वचन लाने के लिए। परंतु दाऊद राजा था, न कि भविष्यद्वक्ता, समझे, वो इसको करने के लिए देश में एक भविष्यद्वक्ता था, और परमेश्वर ने सारे अभियान को नकार दिया, क्योंकि उन्होंने कभी सही चाबी का प्रयोग नहीं किया, दरवाजा नहीं खुला। और अब हमें स्मरण रखना चाहिए कि और मस्तिष्क में ये रखना चाहिए, वहाँ परमेश्वर की हर चीज एक निश्चित विधि से की गई और ये तय हो गया। अब परमेश्वर की एक विशेष कलीसिया है जिसमें वो लोगों से मिलता है, और वो उसी कलीसिया में आपको ग्रहण करेगा और दूसरी कलीसिया में नहीं। मैंने ये इसलिए कहा है क्योंकि मुझे बहुत बार गलत समझा गया और लोगों ने मुझे बताया, मैं कहता हूँ क्या आप मसीही हैं? मैं बैप्टिस्ट हूँ। क्या आप मसीही हैं? मैं मेथोडिस्ट हूँ। क्या आप मसीही हैं? मैं पेंटिकॉस्टल हूँ। अब देखिए, परमेश्वर को इस बात से कोई मतलब नहीं, आप गलत चाबी घुसा रहे हैं, परंतु एक सही चाबी है, एक है जहां परमेश्वर ने मेथोडिस्ट में मिलने की प्रतिज्ञा कभी नहीं की, या बैप्टिस्ट में, या पेंटिकॉस्टल में, या किसी नामधारी में। वो तो नामधारी के लिए विचार भी नहीं करता, वे उसके विरोध में हैं। इस लंबे संदेश में मैं जल्द ही इसे आराधनालय में लूंगा और फिर जैक इसे सुनेंगे और तब आप देख सकते हैं कि आप इस विषय में क्या करना चाहते हैं, क्योंकि ये टेप होगा। अब लोग ऐसा व्यवहार करते हैं कि परमेश्वर उनके धर्म विज्ञान के आधार पर उनसे मिलने के लिए बाध्य है। अब लोग ऐसा व्यवहार करते हैं, वे एक दूसरे से संबंध भी नहीं रखते। त्रिएकता और पेंटिकॉस्टल एकवाद के साथ नहीं मिलेंगे, न ही एकवाद वाले त्रिएकता वालों से मिलेंगे। मेथोडिस्ट बैप्टिस्ट के साथ नहीं होंगे, क्योंकि एक विधिवादी है और दूसरा कॉल्विनवादी, इसलिए उनकी कोई संगति नहीं। और वे लोगों के मस्तिष्क को इतनी बुरी तरह घुमाते हैं कि वे एक दूसरे के विरोधी ही हो जाते हैं। कुछ समय पहले मैं अस्पताल के कमरे में प्रार्थना करने गया। वहाँ एक महिला बहुत बीमार पड़ी थी, शल्य चिकित्सा होने वाली थी, वे आशा में थे कि वो मर जाएगी। दूसरी महिला वहाँ लेटी थी, मैं उसके लिए प्रार्थना का ध्यान कर रहा था। मैंने उससे कहा, यदि मैं प्रार्थना करूँ तो आप थोड़ा ध्यान रखें, और उसने कहा, उस पर्दे को खींच दो। और मैंने कहा, मुझे खेद है। मैंने कहा, मैं प्रार्थना मांगने जा रहा था। उसने कहा, पर्दा खींच दो। मैंने कहा, हाँ माता जी। वो और उसका पुत्र वहाँ बैठे हुए थे, एक आम मामूली फैशन दिखने वाला। और मैंने कहा, क्या आप मसीही हैं? उसने कहा, हम तो मेथोडिस्ट हैं। कहा, मैंने आपसे ये कभी नहीं पूछा। मैंने पूछा, आप यदि क्या आप एक मसीही हैं, समझे? और इसलिए उसने कहा, वो पर्दा खींच दो। देखिए, क्योंकि कोई जो मेथोडिस्ट नहीं था, वो एक मरती हुई महिला के लिए प्रार्थना करने जा रहा था, जो कि वो भी थी, परंतु क्योंकि ये उसकी अपनी संस्था से संबंधित नहीं था, तो वो इसे सुनना भी नहीं चाहती थी, इससे कोई मतलब नहीं रखना चाहती थी। यदि वो फरीसी थी तो मैंने ऐसी कभी नहीं देखा। प्रतीक्षा करें जब तक आप ना सुने द ट्रेल ऑफ द सर्पेंट, सांप के चरण चिन्ह। ओ ठीक है, अब सोचते हैं कि उनका नामधारी संस्था ही एक है जो परमेश्वर के साथ रजिस्टर है। परमेश्वर आपकी नहीं सुनेगा जब तक कि मेथोडिस्ट या बैप्टिस्ट या त्रिएकता या एकवाद ना हो या कुछ इस प्रकार का। ये गलत है, और मेरा उद्देश्य ये है। परंतु यदि लोगों के हृदय में और मस्तिष्क में ऐसी इच्छा है कि सही हो, मैं विश्वास नहीं करता कि उस महिला ने ये किया, क्योंकि या कोई भी एक मेथोडिस्ट नहीं उठेगा और मेथोडिस्ट कलीसिया को लेगा, क्योंकि वो जान गया है कि ये गलत था। मनुष्य सोचता है ये सही है। मैं विश्वास नहीं करता कि त्रिएकता एकवाद को दोषी ठहराएगी या एकवाद त्रिएकता को और पेंटिकॉस्टल को, क्योंकि वो भिन्न होना चाहते हैं। वो सोचता है वो सही है और आपको उसके विचार का सम्मान करना चाहिए। आप जानते हैं, कम्बल दोनों ओर से खींचता है। परंतु स्मरण रखें, इस सब में यदि कुछ पुरुष या स्त्री के हृदय में हो, परंतु उन्होंने विश्वास किया कि ये सही है, तो फिर कहीं तो ये सही होना चाहिए। जैसा कि मैंने अक्सर कहा, जब गहराई गहराई को पुकारती है, तो गहराई है जो उस पुकार का उत्तर देती है। आप जानते हैं कि हमें ये बताया गया कि सील एक बार समुद्र के किनारे चली पैरों से, परंतु अब उसके पैर नहीं हैं, वे पंखों में बदल गए, क्योंकि वो पंखों की आवश्यकता में था। जब उसे सूखी भूमि पर से लिया गया समुद्र में, पंख रखने वाला जानवर प्रकृति ने पैर के बदले उसके पंख बनाए, क्योंकि पैदल चलने से अधिक पानी में तैर सकती थी। मैं उस महान व्यक्ति के विषय में नहीं सोच सकता जो दक्षिणी ध्रुव पर गया, उसका क्या नाम था, बर्ड वे कहते हैं, उसके पास कुछ जानवरों के लिए कोट थे इस प्रदर्शन पर कि वो दूध के लिए जानवर को लेगा। उसने बालों के कोट बनाए कि उन पशुओं को ठंड से मरने से बचाए, परंतु जब वो वहाँ पहुँचा, उन्हें किसी बाल वाले कोट की आवश्यकता नहीं पड़ी, प्रकृति ने उन्हें बढ़ा दिया, समझे? क्यों? इसके पहले मछली की पीठ पर सिन्ना हो तो उसके तैरने के लिए पानी होना चाहिए, या फिर उसके कभी भी सिन्ना नहीं होता। इसके पहले भूमि पर पेड़ बड़ा हो, उसके पहले उसके बढ़ने के लिए भूमि का होना अवश्य है, या फिर पेड़ पेड़ ही नहीं होता। इसलिए आप देखिए, जब तक मनुष्य के हृदय में किसी चीज के लिए बुलाहट हो, तो वो कहीं इसका उत्तर देने के लिए कुछ होना चाहिए कि उस पुकार को शांत करे। एक स्त्री कुछ समय पहले एक महिला का शव परीक्षण हुआ जो मर गई थी, और कारण दावा करने वाले का कारण जिससे वो मरी, उसने सारे समय निरंतर प्याज को खाया। यदि वो प्याज नहीं खाती तो उसके सिर में जलन होती और सब कुछ वे इसे समझ नहीं सके। इसलिए शव परीक्षण में उन्होंने पाया कि महिला पर एक प्रकार की कोशिका बढ़ गई थी, और उसके लिए उनके पास एक नाम है, और उन्होंने इस बढ़े हुए मांस को लेकर इसे प्याज के कटोरे में डाला और इसने प्याज को रात भर में घोल दिया। समझे, ये क्या था? ये उस महिला में कुछ था उस प्याज को पुकारने के लिए, और यदि प्याज ना होती तो वो बढ़ा हुआ मांस भी ना होता। दूसरे शब्दों में, पहले तो कोई रचयिता होना चाहिए, इसके पहले की कोई रचना हो। समझे, अब यदि मनुष्य के हृदय में चाहत है, जैसे मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, कैथोलिक और दूसरे सारे कोई एक सच्चा मार्ग पाने का यत्न कर रहे हैं, और इन्हें उनके याजक चरवाहे द्वारा बताया गया है और आदि आदि कि ये ही सच्चा मार्ग है, वे कहते हैं कि पादरी कहता है कि कैथोलिक कलीसिया को छोड़ और कहीं उद्धार नहीं है। हर कलीसिया अपना लेती है, उनके अपने विचार, इनमें से कुछ नहीं स्वीकारेंगे, परंतु वे इसे अपने व्यवहार के द्वारा करते हैं। आपका व्यवहार आपके शब्द से ज्यादा तेज बोलता है, ये बस नहीं तो वे बस कैथोलिक से अधिक ढोंगी हैं। कैथोलिक इसे मानते हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि केवल यही बात है, परंतु वे ये नहीं करेंगे, वे इसे छिपाते हैं, परंतु उनका व्यवहार ये सिद्ध करता है कि वे क्या सोच रहे हैं। समझे, अब तो फिर एक स्थान होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के हृदय में इच्छा है कि उसे पाए, और मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर के वचन में हर बात के लिए उत्तर है जिसकी हमें आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर के पास उत्तर है, और अब हमें इसे पवित्र वचनों में खोजना है, और फिर यदि परमेश्वर हमें पवित्र वचनों से दिखा दे कि यही स्थान है, केवल एक ही आधार है, केवल एक नामधारी यदि ऐसा है तो, केवल एक मार्ग जिसमें परमेश्वर मनुष्य से मिलेगा, तो हम उसे पकड़ लेंगे, क्योंकि हमने बाइबल का सत्य पा लिया। ये क्या कहता है? और शब्द व्यवस्था विवरण, शब्द का स्वयं में अर्थ है दो नियम, शब्द व्यवस्था विवरण। और परमेश्वर के दो नियम हैं, दो नियम, इनमें से एक वचन की अवज्ञा और मरना, और दूसरा वचन का पालन और जीना। ये दो नियम हैं, और व्यवस्था विवरण का अर्थ वे दो नियम। ये दोनों पूरी रीति से हमें वचन में दर्शाए गए हैं। इनमें से एक मृत्यु है, दूसरा वाला जीवन है। जीवन और मृत्यु, परमेश्वर जीवन में व्यवहार करता है और शैतान केवल मृत्यु में, और ये संसार में लोगों पर दर्शाए गए हैं खुलकर, सबकी आंखों के सामने, और इसके लिए कोई बहाना नहीं है। इनमें से एक सीने पर्वत पर दर्शाया गया जब नियम दिए गए थे, जिसने कि समस्त मानव जाति को मृत्यु के लिए दोषी ठहराया, और दूसरा कैलवरी पहाड़ पर दिया गया जो समस्त मानव जाति को जीवन में लाया, जब जुर्माना यीशु मसीह में भुगतान कर दिया गया। व्यवस्था विवरण के दो नियम पूरे हो गए इन दो महान बातों में। मैं चाहता हूँ आप फिर ध्यान दें, वहाँ दो वाचाएं भी दी गईं। एक वाचा आदम को दी गई जो कि शर्तों पर थी, जैसे नियम, यदि आप इसे नहीं छुएंगे तो आप जीवित रहेंगे, परंतु यदि आप इसे छुएंगे आप मर जाएंगे, ये नियम था। फिर दूसरा नियम अब्राहम को दिया गया जो कि अनुग्रह से था, बिना शर्त के, मैंने तुझे और तेरे बाद तेरे वंश को बचा लिया है, आमीन। ये कैलवरी का प्रतीक है, न कि आदम की वाचा थे, अब्राहम की वाचा है, परंतु अब हमें उसे ये कहते हुए सुनते हैं, केवल एक ही स्थान है जहां वो मनुष्य से आराधना में मिलेगा। आपने ये इस मूल पाठ में सुना है, हम इसका उल्लेख करेंगे पीछे कुछ मिनटों में। अब यदि केवल एक स्थान है कि परमेश्वर मनुष्य से मिले, तो अच्छा है हम ध्यानपूर्वक रहें। इस प्रातः हम अपने रीतियों को एक ओर रख दें, और इस संडे स्कूल के पाठ में बहुत ही निश्चित है कि हम एक स्थान पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ कहा है वो आपको किसी दूसरे स्थान में स्वीकार नहीं करेगा, किसी दूसरी कलीसिया में वो आपको स्वीकार नहीं करेगा, केवल अपनी ही कलीसिया में, केवल वही स्थान जहां वो आपको स्वीकार करेगा। अब आप क्या कहेंगे भाई ब्रैनम, यदि मैं निष्कपट हूँ? नहीं, स्मरण रहे यीशु ने कुछ निष्कपट लोगों से बातें की, उसके दिनों के उपासक, और उसने कहा व्यर्थ में तुम मेरी आराधना करते हो। सच्ची वास्तविक आराधना उनके हृदयों की गहराई से, व्यर्थ में तुम मेरी आराधना करते हो, मनुष्य की आज्ञाओं को शिक्षा करके सिखाते हो या उनके नामधारी का मत्सार। ईमानदार, श्रद्धा सहित, ऐसे ही धार्मिक जितने वे हो सकते हैं। और ये फरीसियों के लिए नया नहीं था। केन और हाबिल पहले दो उपासक जो उत्पन्न हुए, यहाँ प्राकृतिक जन्म पृथ्वी पर बिल्कुल एक ही मनुस्थिति में आए। केन वैसे ही धर्मी था जैसे हाबिल था। दोनों ने वेदियां बनाई, दोनों ने परमेश्वर से प्रेम किया, दोनों ने बलिदान किए, दोनों ने आराधना की, दोनों ने दशमांश दिया, दोनों ने हर चीज एक ही सी की। परंतु हाबिल विश्वास के द्वारा, जो कि प्रकाशन है, प्रकट किया हुआ परमेश्वर का वचन स्पष्ट दिखाया गया और प्रमाणित महिमा हो। केन ने बलिदान चढ़ाया, परंतु परमेश्वर ने इसे प्रमाणित नहीं किया। आराधना परमेश्वर की मांग है, और केन ने बलिदान चढ़ाया, परंतु परमेश्वर ने इसे प्रमाणित नहीं किया। परंतु सच्चे मार्ग से आप कहते हैं ठीक है, मेरी कलीसिया ये है, मेरी, एक मिनट रुकिए। परमेश्वर अपने ही वचन का अपने शब्द में अनुवाद करता है जिसमें वो बोला। देखिए, केन ने कहा मैं धार्मिक हूँ, मैं अपने बनाने वाले का प्रेमी हूँ, मैं आपको ये शानदार वेदी चढ़ाता हूँ, मैं आपको ये बलिदान चढ़ाता हूँ, मैंने ये सारी चीजें बनाई हैं प्रभु, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। हाबिल ने वही बात कही। अब ये वाला प्रमाणित हुआ, जो सिद्ध हुआ। परमेश्वर नीचे उतरा और हाबिल का बलिदान स्वीकार किया, क्योंकि प्रकाशन के द्वारा उसने परमेश्वर के सही सच्चे मार्ग पर वार किया, जो कि स्वीकार किया गया। अब ध्यान दें, केन की आत्मा वचन में से आई, ठीक इन अंत के दिनों में, आधारभूत, ऐसा ही आधारभूत जैसा दूसरा वाला था। भविष्यवक्ता बालाम को देखिए और मूसा को, दोनों सात वेदियों के साथ, यहोवा की वेदी, दोनों पर लहू, और केवल इतना ही नहीं, परंतु प्रत्येक पर मेढ़ा, अंक ज्ञान, ठीक सही अंक, सात सात मेढ़े, दोनों वेदियों पर एक साथ, ऐसा ही आधारभूत जैसा दूसरे वाला, दूसरा भी वैसे था। परंतु किसको परमेश्वर ने प्रमाणित किया, समझे समझे? वो जो उसके वचन में था। आधारभूत का अधिक महत्व नहीं, ये तो परमेश्वर का प्रकाशन है। अब सोचें, ये मनुष्य क्यों ये बुलाए गए और इस स्थिति में रखे गए, ये फरीसी, यीशु के द्वारा कहा तुम व्यर्थ में मेरी उपासना करते हो। उसकी आराधना, मूल आराधना, सच्ची आराधना उनके हृदयों से, तुम व्यर्थ मेरी उपासना करते हो। क्यों? मनुष्य के रीति रिवाजों की शिक्षा, उनको तुम परमेश्वर की आज्ञा बनाते हो, लोगों के लिए कोई प्रभाव नहीं है। यदि मैं आपको मेथोडिस्ट का संदेश सिखाऊं, तो इसका आप पर कोई प्रभाव ना होगा, ये दुल्हन का समय है। यदि मूसा नू का संदेश सिखाता, तो इसका कोई प्रभाव नहीं होता। यदि यीशु मूसा का संदेश सिखाता, तो इसका कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि पहले से ठहराया बीज वहाँ पर है, उसे उसी प्रकार के जल से सींचा जाएगा जो बीज के लिए दिया गया है, समझे? ये किसी और दशा में नहीं बढ़ेगा, वही दशा होनी चाहिए जो इसे बढ़ाती है। अब आप एक मुर्गी के अंडे को लें और उसे ऊष्मा यंत्री में रख दें, जो मुर्गी के नीचे होना चाहिए, परंतु कैसे भी ये निकाल देगा। इसे पिल्ली के नीचे रख दें, ये बच्चा निकाल देगा। ये गर्मी है वो दशा जिससे उसमें बच्चा निकलता है, इसलिए इसे दशा में होना चाहिए। आप एक अच्छा जीवित अंडा लें और मरी हुई मुर्गी के नीचे रख दें, ये बच्चा नहीं निकालेगा, समझे? ये दशा है, ठीक है। इसी प्रकार से ये इस युग में है जिसमें हम रह रहे हैं। आपको ये ढूंढना है कि परमेश्वर की विधि है इस युग में करने के लिए क्या है। यही मार्टिन लूथर ने पाया, यही जॉन वेस्ली ने पाया, पेंतीकॉस्तलों ने अपने युग में यही पाया, परमेश्वर का युग, या काल और इसे करने का समय। अब पेंतिकोस्तल वो भाई एक, मैं विश्वास करता हूँ उसकी एक आंख बाहर थी, एक अश्वेत भाई जिसने वास्तव में कैलिफोर्निया में पेंतिकोस्तल संदेश आरंभ किया, ओल्ड एजर्सू स्ट्रीट। उसका उपहास उड़ाया गया और क्योंकि वो एक निग्रो था उसका उपहास उड़ाया गया, परंतु वो उस युग के लिए संदेश लाया। एक छोटी देह, एक व्यक्ति जो कठिनाई से अपने नाम का हस्ताक्षर कर सकता था, परंतु परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया कि यही युग है उन वरदानों के वापस आने का। वे आए, कोई मतलब नहीं क्या कहा, पर वे आए। परंतु हर कोई उस वातावरण में आ गया और देखा कि ये वो युग था, और देखा परमेश्वर ने उन लोगों को प्रमाणित किया जो भाषाओं में बोल सकते थे और आदि आदि, ये घटित हुआ। परंतु जब वो गया और इस पर रुक गया कि केवल यही प्रमाण है, इसने इसे मार डाला, समझे, सीधा गया ये किया, तब उन्होंने इसे उसे अलग करना आरंभ कर दिया और नामधारी बना रहे हैं, और एक बादल पर आ रहा है और दूसरा झाड़ी में आता है, और ओ प्रभु ये चल रहा है, यही नामधारी करता है, समझे। परमेश्वर नामधारी का लेखक नहीं, क्योंकि नामधारी बाबुल है और वो भ्रम का लेखक नहीं। हम उसे देखते हैं, आपको इसे देखने के लिए बुद्धिमान भी नहीं होना है, ये बाबुल है, समझे। रीति रिवाज, इस पर सोचें, ईमानदार लोग अब भी, क्योंकि वे इसका विश्वास करते हैं, वहाँ अब भी आवश्यकता है कि एक निष्कपट स्थान जहाँ परमेश्वर मिलता है हो। अब पद दो पर ध्यान दें, उस स्थान में आराधना करें जिसे मैंने चुना है, बलिदान निसंदेह जहाँ वे आराधना करते हैं जाकर बलिदान चढ़ाओ। वो स्थान जो मैंने चुना है, ना कि जो तुमने चुना, जो मनुष्य चुनता है, परंतु जो मैंने चुन लिया है, तुम उस स्थान में आराधना करो। वहाँ दिखाता है कि वही केवल एक स्थान है, दूसरे व्यर्थ। ये तुम्हारा चुना हुआ नहीं होना चाहिए, परंतु ये उसकी पसंद का होना चाहिए। अच्छा, मुझे कलीसिया में नहीं जाना था, या तुमने इतने संकुचित विचार के, क्यों तुम स्त्रियों के प्रचार पर भी विवाद करोगे, और या स्त्रियों के बाल कटाने और पुरुषों की इन बातों पर क्यों तुम इतने संकुचित विचार के हो। ठीक है, तुम्हें इस विषय में परमेश्वर के वचन को नहीं लेना है, तुम जाओ जहां वे ये करते हैं, समझे, और आप पाएंगे कि ये वचन में है, इसलिए ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, समझे। यीशु ने भी यही बात कही कि हर छोटा बिंदु, हर चीज में आपको ईमानदार होना चाहिए, सदा छोटी छोटी दाग को, छोटी छोटी लोमड़ियां दाग को बर्बाद करती हैं। कभी कभी आप छोड़ देते थे, बड़ी बड़ी बात नहीं जो आप करते हैं, ये छोटी छोटी बातें जो आप नहीं करते। स्मरण रखें, जंजीर कमजोर जोड़ों पर ही मजबूत होती है। धन्य है वे जो परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन करते हैं, ताकि उन्हें भीतर प्रवेश करने का अधिकार हो। आप कहते हैं, एक मनुष्य ने अधिक दिन नहीं हुए मुझे बताया, कहा मैं कपड़े की लीक का धर्म प्रचार नहीं करता। मैंने कहा, तो फिर तुम सुसमाचार प्रचार नहीं कर रहे हो। जी हाँ, परमेश्वर ने ये वहाँ रखा है, उसने कहा कि क्या करना है, और आप चाहें इसे करें कि आप स्वाभाविक तर्कसंगत हैं। क्या छोटी बात, क्या छोटी मामूली, यीशु ने कहा धन्य वो है जो छोटी छोटी बातों को लेगा, छोटी चीजें करता है, और एक स्त्री अपने बालों को बढ़ने दे, ये केवल क्योंकि ये कुछ है जो वो कर सकती है, और वो ये भी नहीं करेगी, वो ये भी नहीं करती। ओ, हमें बड़ी बड़ी बातें सिखाओ। आप कैसे महान बातें सीख सकते हैं जब आप साधारण बातें नहीं करते, आम बातें, क्योंकि आप देखिए आपका उद्देश्य और आपका लक्ष्य गलत है। ये आपका प्रेम परमेश्वर से है, प्रभु मैं चिंता नहीं करता कि आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं, मैं करने के लिए तैयार हूँ, तब आप कहीं पहुँच रहे हैं। यदि आप इस प्रकार नहीं करते हैं जिस प्रकार से उसने करने को कहा, ये उसका चुनाव है, वो स्थान जो मैंने चुना है, यही जहां तुम अपने बलिदान के साथ आराधना करते हो। आप रखिए, केन अपना बलिदान लाया, हाबिल अपना लाया, ये निर्भर करता है कि आप कौन से स्थान में ले जाते हैं। यदि आप इसे उस स्थान में ले जाते हैं जो उसने चुना है, तो ये ठीक होगा, वो इसे स्वीकार करेगा। यदि ये नहीं है, वो इसे स्वीकार नहीं करेगा। चिंता नहीं, ये वही बलिदान है जहाँ ये है, ये अब भी अस्वीकार्य है जब तक कि ये उस निश्चित स्थान पर नहीं लाया जाता। अब हम ये ढूंढना चाहते हैं कि हम बलिदान को कहाँ लाना चाहते हैं। यदि हम पा सकें, हम सब स्वर्ग जाना चाहते हैं, क्या नहीं, और हम सब जानते हैं कि हमने गलत किया है। हम सब ये विश्वास करते हैं कि यीशु बलिदान है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि उसे कहाँ ले जाएं कि ये स्वीकार होगा, समझे? ये ठीक बात है। बाइबल हमें बताती है कि उसे कहाँ ले जाएं और फिर ये स्वीकार होगा, वहाँ बाहर ये स्वीकार नहीं होगा। अब हम यहाँ भी ध्यान दें कि वो स्थान जो उसने बलिदान के लिए चुना है कि ले जाएं, स्थान जो उसने चुना कि बलिदान को रखें, आप इसे किसी भी द्वार पर नहीं रख सकते, परंतु वो स्थान जो उसने रखने के लिए चुना, उसने अपना नाम भी उस स्थान में रखा है। देखिए, यहाँ उसने यही कहा है, उसने अपना नाम रखने के लिए इसे चुना है। अब वचन में इस स्थान की खोज करें, क्योंकि वो स्थान जहाँ उसने अपना नाम रखा है। अब हम इसे मूल पाठ से पढ़ें, और मेरे पास एक छोटी टिप्पणी थी यहाँ रखी है, जो मैं इस प्रातः मेरे पास आए हैं। इस अध्याय का दूसरा पद लें। अब मैं अधिक नहीं रोकना चाहता लोगों के आधार पर, यहाँ संचार व्यवस्था पर। अब दूसरा पद 16वें अध्याय का, इसलिए जो स्थान यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने को चुन लेगा, वहीं अपने परमेश्वर यहोवा के लिए भेड़ बकरियों और गाय बैल फसह करके बलि करना। अब आप ये नहीं ले सकते, आपकी ईमानदारी और वो सब जो आप स्वीकार कर लेना चाहते हैं, आप बस मेथोडिस्ट वेदी पर नहीं ले जा सकते, एक बैप्टिस्ट वेदी पर, पेंटिकॉस्टल वेदी पर, परंतु कहीं एक वेदी है जो उसने चुनी है कि वो अपना नाम उसमें रखे, और वो आपसे उस स्थान पर मिलेगा। अब यदि आपकी सारी चीजें ठीक ठीक चल रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, हर चीज व्यवस्थित है, तो तारों में कहीं शॉर्ट यानी कि लघुपथ है, वो करंट नहीं आएगा क्योंकि ये पृथ्वी में चला गया। और जब तुम परमेश्वर का एक वचन लोगे या उसके स्थानों में से एक और अपने हृदय के अंदर स्वार्थ का उद्देश्य, तो वो ये परमेश्वर की सामर्थ को वहीं अर्थ यानी पृथ्वी में डाल देगा। यदि आप इसे करते हैं क्योंकि आप तेज तर्रार होना चाहते हैं, किसी से भिन्न होना चाहते हैं या कुछ, तो वहीं अर्थ हो जाएगा, ये फ्यूज को उड़ा देगा, आप गलत हैं। आपको ईमानदारी से आना होगा, अपने संपूर्ण हृदय से आपका उद्देश्य और आपका लक्ष्य जो परमेश्वर पर है, फिर उसके स्थान को ढूंढें, ढूंढें कि उसने कहाँ कहा है और उसे वहाँ लाएं, समझे? मार्था और मरियम को देखें, जब यीशु वापस आया था, इसके बाद कि उसने उन्हें यीशु समाचार सिखाया, अपने दिन का उजियाला, वो मसीह होने के नाते था, वो घृणा का पात्र और अस्वीकार किया गया। ओ फरीसी और कलीसियाओं ने उसे तुच्छ जाना, परंतु लाजर मर गया था, भाई जो उसका प्रिय मित्र था, उसे वहाँ रखने दिया और उन्होंने उसे बुलाया, वो आया तक नहीं। परंतु मार्था पर ध्यान दें, उसके मनोस्थिति पर, उसने कहा, प्रभु यदि तू यहाँ पर होता, उसे उसकी सही उपाधि दें, लॉर्ड, प्रभु, LORD, यहवे, यहोवा, महिमा हो। यदि तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई ना मरता। जीवन और मृत्यु एक ही मार्ग में नहीं जुड़ सकते या एक ही घर में। तू होता तो वो मरता नहीं। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। परमेश्वर ने कहा, जब उसने पहले कहा तेरा भाई फिर जीवित होगा, उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं सही में इसका विश्वास करती हूँ, एक यहूदन मैं विश्वास करती हूँ कि मृतकों का सर्वसाधारण पुनरुत्थान होगा, और मैं विश्वास करती हूँ कि मेरा भाई आराधना में वैसे ही ईमानदार और निष्कपट था, और मैं विश्वास करती हूँ कि तू ही वो मसीहा है जिसने बाइबल में कहा, क्योंकि परमेश्वर अपना वचन तुझ में प्रमाणित कर रहा है कि तू इस घड़ी का संदेशवाहक है। तू वो मसीहा है, मैं विश्वास करती हूँ, जो आने वाला था। तू वो मसीहा है क्योंकि तेरे कार्य गवाही देते हैं कि परमेश्वर ने तुझे यहाँ मसीहा होने के लिए भेजा है। ओ, ध्यान दे, अब दांते अपने सही स्थान पर आने लगे हैं, समझे? अब उसे अधिकार था कि वो कहे कि तू क्यों नहीं आया कि मेरे भाई को खड़ा करता, क्यों तूने उसे चंगा नहीं किया, तूने दूसरों को चंगा किया, तेरा परम मित्र, और अब देख क्या हो गया। नहीं नहीं, इस प्रकार का उद्देश्य कहीं नहीं पहुंचा पाता। मैं विश्वास करती हूँ कि तू ठीक वही है, तू वचन में प्रमाणित है। मैं विश्वास करती हूँ कि यही दिन है जिसमें मसीहा को आना है, हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं चिंता नहीं करती कि वे सब क्या कहते हैं, मैं अपने पूरे हृदय से विश्वास करती हूँ कि जो मैंने देखा और सुना वो वचन वो वचन तुझ में प्रमाणित हुआ कि तू ही मसीहा है। उसके अंदर देखिए, उसके पास कुछ पूछने को था, परंतु उसे ठीक मार्ग से ही आना था। क्या होता यदि वो भागती और कहती और फिर तू मुझे बताता है कि तू मसीहा है? और इतना भी नहीं, सभ्य मनुष्य जितना शिष्टाचार नहीं कि हमारे निवेदन का उत्तर देता, जबकि हमने तुझे खिलाया और घर में रखा और सारी बातें तेरे लिए इतना लिया और अपनी कलीसिया छोड़ी जैसे कि तूने आज्ञा दी कि उन नामधारियों में से निकल आओ, समझे? और हमने छोड़ दिया और हम निकाले हुए में गिने गए और त्यागे हुए और तेरे लिए सब कुछ किया, फिर भी इतना भी शिष्टाचार नहीं हमारे बुलावे का उत्तर देता। अब वास्तव में उसको ये अधिकार था, जैसा आप छोटे बालों के विषय में कहते हैं, मैं अमेरिकन नागरिक हूँ, मैं छोटे वस्त्र पहन सकती हूँ, जो चाहूँ करूँ, कुछ भी अवैध नहीं है, ये आपका अधिकार है। परंतु भेड़ अपना अधिकार दे देती है। यदि आप मेमना हैं तो ऊन के सिवाय आपके पास कुछ नहीं है, वो इसे दे देता है। ये उसको परमेश्वर से अधिकार है, परंतु वो दे देता है। मुझे अधिकार है कि किसी भी नामधारी का सदस्य बनूं, ये ठीक बात है, परंतु आप इसे छोड़ देते हैं, समझे? वो अपने सारे अधिकारों को छोड़ देती है कि परमेश्वर के प्रकट हुए वचन को पहचाने जो कि ठीक उसके सामने है। उसने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, वो जो मुझ में विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तब भी वो जीवित रहेगा। जो जीवता है और मुझ में विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा। क्या तू इसका विश्वास करती है? देखिए, वहाँ एक और छोटा मामला है, वो पंक्ति में नहीं आई, देखा? हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि तू मसीह है, जीवते परमेश्वर का पुत्र। ओ भाई, हर चीज उस समय ज्वलंत होने को तैयार थी, समझे? तुमने उसे कहाँ रखा है, समझे? और आप जानते हैं क्या घटित हुआ। देखिए, आपको इसके पहले वो बलिदान को स्वीकार करे सही स्थान में पहुँचना है। देखिए, अंदर आना ही है। ध्यान दें, वो स्थान तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने के लिए चुन ले, उसके संग कोई खमीरी वस्तु न खाना। बलिदान में ये किसकी प्रतिछाया है? इसे किसी मत्सार से न मिलाना, वचन ही होना है, कोई खमीर नहीं। खमीर, आप जानते हैं किसी भी चीज में खमीर क्या है? थोड़ा सा खमीर सारे आटे को खमीरा कर देता है। सारा आटा देह है। आप नामधारी का जरा सा अंश या मत्सार मसीह में नहीं मिला सकते। नहीं श्रीमान, ये कार्य नहीं करेगा। आपको बीते बृहस्पतिवार का संदेश याद होगा, आपका पुराना पति मर जाना चाहिए, आपका नया पति वचन है। 7 दिन तक तू अखमीरी रोटी खाना, 7 दिनों, ये किसकी प्रतिछाया है? पूरी 7 कलीसियाई काल, 7 दिन। वे क्यों इसे 7 दिन तक खाएंगे? किसके पहले? जाने के पहले। और सारी कलीसियाई युग आरंभ से अंत तक केवल परमेश्वर के वचन पर ही रहना है उस युग के। इसलिए आपका रोमन मत्सार, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट और पेंटिकॉस्टल मत्सार सब मरे हुए हैं। अब ध्यान दें, वहाँ यहाँ तक कि दुख की रोटी, इसके लिए सताए गए लूथर, वेस्ली, पेंटिकॉस्टल, सारे सताए गए, और इस प्रकार से तुम भी सताए जाओगे। क्यों तू मिस्र देश उतावली करके निकल आया? तू इस रीति से, तुझको मिस्र देश से निकलने का दिन जीवन भर स्मरण रहेगा। 7 दिन तक तेरे सारे देश में तेरे पास कहीं खमीर देखने में भी ना आए। मसीह की सुंदर दुल्हन में, रोमन राज्य के अंधेरे युगों में उसकी मृत्यु, जिसमें उसे मरना था, जब तक गेहूं का दाना भूमि में ना गिरे, दूल्हे को आना है, परमेश्वर की सिद्ध रचना। आप सबने इस पर मेरा संदेश सुना है। एक दिन मैं लॉस एंजलिस के फॉरेस्ट लॉन में खड़ा था और मेरा हृदय उछला। कितने कभी फॉरेस्ट लॉन गए हैं? वहाँ मूसा की मूर्त है, एंजलो के द्वारा, मैं विश्वास करता हूँ ये माइकल एंजलो, और ये एक सिद्ध मूर्ति सारी, परंतु उसके दहने घुटने में वहाँ लगभग आधा इंच गहरा गड्ढा है, और मार्गदर्शक, मैं देख रहा था, उसने इस ओर मुझे संकेत किया। उसने कहा, माइकल एंजलिस ने इसे बनाने के यत्न में सारा जीवन लगाया। वो मूर्तिकार और वो मूसा की मूरत बनाने का यत्न कर रहा था। उसके मस्तिष्क में था कि मूसा कैसा दिखता था। ये उसके हृदय में था, मूसा कैसा दिखना चाहिए। और फिर उसने अपना जीवन लगा दिया, थोड़ी छीनी यहाँ और इसे घिसा, पीछे हटकर और इसे देखा। वर्षों उसने इस पर काम किया। अंततः जब ये पूरी हो गई, वो पीछे हटा और अपने कपड़े हथौड़ा नीचे रखा। उसने मूर्ति को देखा। ये मूसा की इतनी सिद्ध मूरत थी जो उसके हृदय में थी, यहाँ तक कि वो अपने आप में नहा रहा। उसने हथौड़ा उठाया और प्रहार किया, चिल्लाया, बोल। ये माइकलो एंजेलिस की सर्वोत्तम रचना कहलाई। उस मूर्तिकार में कुछ था, वो मूसा कैसा होना चाहिए जो उसकी कल्पना थी। वो प्रतिछाया में केवल एक चित्र था उस महान पिता परमेश्वर का। पृथ्वी के रचने के पहले ये उसके हृदय में था, एक पुत्र, क्योंकि वो एक पिता था, परंतु ये अब भी उसके वचन के वंश सूत्र में था। और उसने मनुष्य की उत्पत्ति की, उसे उसकी स्वतंत्र इच्छा पर रखना था, परंतु वो मनुष्य गिर गया। परंतु महान मूर्तिकार परमेश्वर, जिसने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से बनाया, उसने ये तय नहीं कर दिया। उसने मनुष्य को फिर से बनाना आरंभ किया और उसने नूह को बनाया, वो पीकर मर गया। उसने मूसा को बनाया, वो उसके वचन का पालन ना कर सका। उसने भविष्यद्वक्ताओं को बनाया जो कठिनाई के समय भागे। वो बनाता और ढालता रहा जब तक कि वो सर्वोत्तम चाहता रहा कि उसे दर्शाए उसके स्वभाव को, उसके हृदय में क्या था कि पुत्र कैसा होना चाहिए। एक दिन यर्दन पर, जब सर्वोत्तम तैयार और बन चुका था, वहाँ एक भेजा हुआ आया, पंडुकी के पंखों पर, कहा। वो इस सर्वोत्तम से इतना उत्तेजित था, जब तक कि उसने उसे कलवरी पर ना जड़ दिया, ताकि वो मर जाए, ताकि हम सब जो सिद्ध नहीं, उसके लहू के बहाने के द्वारा वो बहुत से सर्वोत्तमों को ले आए दुल्हन के नाते अपने पुत्र के लिए। वो सर्वोत्तम परमेश्वर के जोश के कारण दागी था। ऐसे सर्वोत्तम को देखकर उसने हम सब के कारण उस पर प्रहार किया, समझे। वो मरा कि हम जो सिद्ध नहीं हैं, सिद्ध हो जाएं, सर्वोत्तम। अब यहाँ पर ध्यान दें, उसने कहा, 7 दिन तक तुम अखमीरी रोटी खाना। अब रोटी यीशु का प्रतीक है। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जिएगा, परंतु प्रत्येक वचन, न कि यहाँ वहाँ का एक वचन, जैसा नामधारी आपसे विश्वास करवाते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन सिद्ध है। ये परमेश्वर स्वयं अक्षर के रूप में बीज कहलाया, और सही प्रकार का पवित्र शुद्ध विश्वास उस वचन में, उस बीज को उसके जीवन में ले आएगा। ठीक यहीं पर आप रात्रि में विचारों को परखने में देखते हैं, और वे सारी चीजें, क्योंकि ये प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर ने की। उसने मेरे पास खड़े होकर बताया और मुझे बताया कि ये नकली उठ खड़े होंगे, परंतु धैर्य से पकड़े रहना। मैं इसका विश्वास करता हूँ, और मेरा अपना कोई मतलब नहीं कि किसी को दुख पहुँचाऊँ, परंतु परमेश्वर के लिए श्रद्धा युक्त और उस कार्य को करूँ जिसके लिए उसने मुझे बुलाया। इसलिए मैं ये बातें कहता हूँ, और परमेश्वर ने इसकी पुष्टि की है और भेंट और बलिदान स्वीकार किए इससे सत्य प्रमाणित करने के द्वारा। इस विषय में कोई प्रश्न नहीं। अब उस वचन को ध्यान दें। अब हम यहाँ देखते हैं 7 दिन, ये प्रत्येक कलीसियाई युग के लिए। अब जैसे उस सर्वोत्तम को मरना था ताकि हमें सबको जिला और छुड़ा ले, तब पेंतिकोस्तल पर उसकी व्यवस्थित कलीसिया, परंतु उस कलीसिया को बलिदान से होकर निकलना था, और रोमी जगत ने इसे मार डाला, भूमि में डाल दिया। इस किताब का लेखक के नाते मैं इस विषय में नहीं सोच सकता। मेरा बहुत उपहास उड़ाया गया और कहा, शैतान का सारा कुछ ये विलियम बर्नम है। देखिए, यही है जो शैतान सोचने का यत्न करता है। उसने कहा, दर्शन और बातें ये शैतान की हैं। उसने कहा, ओ ये किस प्रकार का सम्मोहन है, यह उच्च संवेदी बोध में कार्य कर रहा है। बुद्धिमान संसार सदा इसे चित्रित करने का यत्न करता है। यही जो उन्होंने यत्न किया कि यीशु को चित्रित करे। आप कैसे ये चीजें करते हैं? इसने क्या किया? उसने कहा, मैं तुमसे एक प्रश्न करूंगा, क्या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई क्या ये परमेश्वर की थी या मनुष्य की? समझे? कहा, हम नहीं कह सकते। कहा, ना ही मैं तुम्हें कुछ बताऊं। ये ठीक बात है। और चला गया। उसके बाद से किसी व्यक्ति ने उससे कुछ नहीं पूछा, समझे? उन्हें अलग कर दिया। उसने इस विषय में उन्हें कुछ नहीं बताया। ये उनका काम नहीं, उसके पास करने का कार्य था और उसने पूरा किया। परमेश्वर इस बात के लिए हमारी सहायता करे। हमें शैतान के प्रश्नों का उत्तर नहीं देना है। ये ठीक बात है। यदि तू है तो ऐसा ऐसा कर। आप इस सुसमाचार के लिए उत्तरदायी हैं, एक प्रचारक हैं, और बस, न कि ये कैसे लिखा गया। ये तो बस इसे कहने के लिए उत्तरदायी है। और एक सेवक के समान यदि आप एक भविष्यवक्ता हैं, तो आप परमेश्वर के लिए उत्तरदायी। और यदि दर्शन जो आता है ये वचन को प्रकाशित करता है और दिखाता है कि ये क्या है, तो आप हर वचन के लिए उत्तरदायी हैं जो बाइबल में है, क्योंकि ये सब आप लोगों के समान लोगों ने लिखा था। परमेश्वर पुराने भविष्यवक्ताओं के द्वारा और पवित्र बाइबल लिखी, समझे? और कोई भी परमेश्वर का सच्चा भक्त इसके वचन को अस्वीकार नहीं कर सकता, परंतु हर वचन का विश्वास करता है और वही प्रचार करता है, तब उस मार्ग से परमेश्वर बाध्य है कि उस वचन को घटित करे। ठीक उसी प्रकार से जैसे प्रतिज्ञा की है, बीज बढ़ेगा। अब फिर ध्यान दें, जल्दी से हम यहाँ पाते हैं कि 7.5 दिनों में जो ये रोटी खानी थी 7 कलीसियाओं में होते हुए, अब जब इसे मरना था और भूमि में जाना था, और ये आलोचना जिसने मेरे विषय में कहा, परमेश्वर जिसकी तुम आराधना करते हो वो अंधियारे युगों में बैठा रह सकता था, और उन माताओं और गर्भवती और उनमें से कुछ के पास छोटे बालक उनकी गोद में, ईमानदार लोग, उन्हें तमाश ग्रह में फेंका गया और शेरों ने उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए और वे चिल्ला रहे थे, उन्हें क्रूस पर लटका दिया और उन्हें जला दिया, स्त्रियों को नंगा कर दिया, युवा कुंवारियों को, और इस प्रकार पीछे फेंक दिया और सिंहों को उन पर खोल दिया। कहा, एक परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा रह सका, समझा जाता है कि अपने सिंहासन पर से नीचे देखा और कहता है, इसमें आनंद करो। तब इस प्रकार से ये बुद्धिमानी का विचार है जो कि शैतान का है। यदि मनुष्य आत्मिक होता तो वो ये जान जाता कि गेहूं के दाने को मरना ही है, इसे रोम के आराधनालय में गढ़ना ही था। परंतु फिर छोटा जीवन का किला मार्टिन लूथर के सुधार में आया कि धर्मी धन्य रोटी जिसे पुरोहित ने आशीषित किया उसके द्वारा नहीं जीवित रहेगा, परंतु परमेश्वर के वचन के द्वारा धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। ये दो किले लाया, गेहूं का बीज बढ़ना आरंभ हो गया। फिर जॉन वेस्ली आया और इसमें जोड़ा। वहाँ और बहुत से थे जो ज्विंगली, और वे आए और कुंवारी के जन्म का इनकार किया और ये मर गया। परंतु साथ साथ मेथोडिस्ट आया, फुंदनी, प्राग मिशनरियों के दिन, और उन्होंने पवित्रीकरण का प्रचार किया, फुंदनी में बढ़ाया। फिर पेंटिकॉस्टल भूसी में निकल कर आए, इतने कि चुनावों को धोखा दें, वास्तविक गेहूं के बीज के समान दिखे। इसे खोला, वहाँ गेहूं बिल्कुल नहीं था, परंतु जीवन भूसी में से होकर निकल रहा था। अब क्या आपने ध्यान दिया, हर 3 वर्षों पश्चात एक महान सभा, क्या घटित हुआ? एक नामधारी, इसे 20 वर्ष हुए कोई नामधारी नहीं है। प्रिय मरते हुए मेमने, ये कभी ना हो। यदि मैं इस पीढ़ी में चला जाऊं, जो लोग इस संदेश का विश्वास करते हैं कभी भी नामधारी के लिए ना रुकें। परमेश्वर, आप ठीक अपने मार्ग में मर जाएंगे। इसे स्मरण रखें। उसी घड़ी जब नामधारी का उल्लेख आपके मध्य में हुआ, मैं चिंता नहीं करता आप कितने ईमानदार हैं। मनुष्य को पवित्र आत्मा के बदले अगुवाई के लिए लिया है कि इस वचन की पुष्टि करे, उसी घड़ी आप मर जाएंगे। मूल बीज नहीं कर सकता क्योंकि बीज के बाद कुछ नहीं बचा। ये वही बात है जो आरंभ में हुई। ये दुल्हन है जो भूमि में गिरी ताकि गेहूं के दाने को फिर से वापस लेकर आए। ध्यान दें, 7 दिनों तक तुम खमीरी रोटी खाना, और ये दुल्हन के साथ होगा। अब आप लोग जिनके पास पुरानी चिल्लाने वाली मेथोडिस्ट माँ थी और आदि आदि, आपको आश्चर्य हुआ यदि वो भाषाओं में न बोली तो वो वहाँ नहीं होगी। ये झूठ है। उसके पास वही पवित्र आत्मा था जो आज आपके पास है, परंतु उनके लिए ये असंभव था, वरदानों की वापसी नहीं, परंतु पूरे 7 दिनों अखमीरी रोटी खाना वचन। वे पहले जो नामधारी हो गए वे मर गए, वे डंठल, वे इकट्ठे किए जाएंगे और जलाए, परंतु जीवन इसमें होकर निकल रहा है। और क्या हुआ, वो सारा जीवन जो डंठल में या पुष्प बल्लड़ में भूसी यानी छिलके में सब मिलकर गेहूं में सिमट गया। और वही पवित्र आत्मा जो लूथर को लाया, वेस्ली को लाया, पेंटेकोस्टल को लाया, पुनरुत्थान में दुल्हन के अंदर सिमट गया। 7 दिन अखमीरी रोटी खाना, दुल्हन के मध्य में कोई खमीर ना पाया जाए, कोई वचन नहीं मिलाना, कुछ नहीं। स्मरण रखें, एक ही वचन पृथ्वी की हर मृत्यु का कारण बना, हर अवैध बालक हवा के कारण जन्मा। पहली कलीसिया, पहले आदम की दुल्हन ने परमेश्वर के वचन का संदेह किया और नामधारी को स्वीकार किया, या एक बुद्धिमान को, या एक विद्यालय अपवाद का, क्योंकि तर्क हुआ। और निश्चय ही परमेश्वर एक भला परमेश्वर है, परमेश्वर एक भला परमेश्वर है, परंतु वो न्याय परमेश्वर भी है। हमें उसके वचन का पालन करना चाहिए। विद्यालय, उसने भी इसे स्वीकार किया। यही जहां आप धर्म विद्यालय के लड़के, कोई संदेह नहीं, आपके जीवन में एक बुलाहट है, परंतु आप किसी बाइबल विद्यालय में भाग गए कि वहां शिक्षा आप में डाल दी जाए और वहीं आप मर जाते हैं। परमेश्वर के संग बने रहें और उसके वचन के संग, वे आपको नहीं करने देंगे, या आप उनकी भक्त मंडली से नहीं होंगे, आपको प्रचार मंच पर स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए उन्हें लेने दो, मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो, हम मसीह का अनुकरण करेंगे। वचन, अब 7 दिन वहाँ कोई भी खमीर दुल्हन में ना मिलाएं, कलीसिया में 7 दिनों तक। अब ध्यान दें, अब जैसे नहीं, तेरे सारे देश में 7 दिन तक कोई खमीर देखने में ना आए। यहाँ बलिदान एक प्रतिछाया है, दुल्हन बलिदान में से निकलकर आ रही है, जो कि मसीह है। और जो पशु तू पहले दिन की संध्या को बलि करे, उसके मांस में से कुछ बेहान तक न रहने पाए। और स्मरण रखें कैसे हम कलीसिया युगों में से होते हुए निकले। कलीसिया का संदेशवाहक सदा पहले वाली कलीसिया युग के अंत में आया, सदा से। पेंटिकॉस्टल का मरना दुल्हन के उठाए जाने को लाता है, समझे। लूथर का मरना वेस्ली को लाता है, समझे। वेस्ली का मरना पेंटिकॉस्टल को लाता है, पेंटिकॉस्टल का मरना अब संदेश को लाता है। यहाँ ठीक, यहाँ सारे वचन में नमूना है। बाइबल में कोई वचन नहीं है, परंतु जिससे वे एक दूसरे से जुड़े हैं, समझे, ये सारी छायाएं। मेरे पास शिक्षा नहीं है, परंतु मेरे पास पवित्र वचन, जो मुझे दूसरे मार्ग से दर्शाता है, जो मुझे प्रकृति से सिखाता है, और ये वचन के द्वारा, ये वचन होना चाहिए, उसकी प्रतिज्ञा को लाता है। मांस बलिदान पहले दिन का सारी रात्रि रहे, भोर तक ना हो। अब यहाँ तक कि लूथर, उसके पास सत्य था और कलीसिया को सिखाया, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आप उसमें नहीं लटकना चाहते जो पूरी पूरी शिक्षा मेथोडिस्ट युग में है। आप क्या करेंगे, इसे आग में जला देंगे। किसकी प्रतिछाया, वो नामधारी जो वचन, छिलका, डंठल, भूसा है, आग से जलना ही है। वो नामधारी वाला भाग जो उसके द्वारा आया नहीं रहना चाहिए, उसे मरना ही है। उसे दूसरे युग के आरंभ तक मत छोड़ो, उसे जला दो। अब वो यहाँ दुल्हन से बातें कर रहा है, बस दुल्हन से, हर युग से होती हुई आ रही है। ध्यान दें, कितना सुंदर है, मेमने का लहू, ये लोग मसीह की देह हैं, बलिदान, मेमने का लहू द्वार पर। अब याद रखें, मेमना जो वध किया गया, मसीह की प्रतिछाया। हम बहुत समय ले सकते हैं, परंतु मेरे पास नहीं है, कुछ और मिनट है, यहाँ पर रुकूं, मुझे यहाँ ठहरना पड़ सकता है और फिर आज रात्रि आरंभ करूं। देखिए, क्योंकि हम बहुत लंबा ले रहे हैं, ये इसके मेरे पास 20 पन्ने हैं टिप्पणियों के इस विषय पर। अब ध्यान दें इस पर, मेमना मसीह का छाया चित्र है, या जो मैंने कहा ठीक है, छाया मसीह मेमना था। उसे नर होना था, भेड़ी माँ का पहला या सदाबहार, जैसे भी आप इसे कहना चाहें, ये उसका पहला होना चाहिए और पहले जांचा और देखा जाना चाहिए कि उसमें कोई दोष ना हो। अब मसीह जांचा गया भेड़ी का पहलौटा कुंवारी मरियम, और किससे जांचा गया? शैतान वचन विरोधी। जब उसने हवा पर प्रहार किया वो गिर गई, मूसा पर प्रहार हुआ वो गिर गया, परंतु जब वो मसीह के विरोध में आया और उसे गलत वचन का उल्लेख करने का यत्न किया, ओ उसे पता चला कि ये मूसा नहीं था, समझे? वो जांचा गया था। क्या किया? वो घूमा, उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। जब उन्होंने मुझे बताया कि आश्चर्यकर्म करता है और वे मुझे बताते हैं कि मसीह को ये करना है, अब यदि ये है, तू भूखा है, तूने खाना नहीं खाया, इन रोटियों को बदल कर इन पत्थरों को रोटी में बदल ले और खा ले। उसने कहा, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जिएगा, तुम्हारे मत्सार आदि, परंतु किसके द्वारा? हर वचन, वचन का एक भाग, हर वचन जो परमेश्वर के मुख से निकला है, जिससे मनुष्य जीता है, समझे? मेमना जांचा गया। देखिए, यदि वो कहीं गिरा, फरीसी, ओ रब्बी, तू युवा भविष्यद्वक्ता, हम सोचते हैं तू बहुत अच्छा है, तू भला है, तू क्यों मुझे भला कहता है? केवल एक ही उत्तम है और वो परमेश्वर है। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? ओ हाँ, परमेश्वर, ठीक है, तो मैं वही हूँ। तूने कहा केवल एक ही उत्तम है, तू क्यों मुझे उत्तम कहता है? जब तुम ये विश्वास नहीं करते कि मैं परमेश्वर हूँ, तो फिर तुम मुझे क्यों उत्तम कहते हो? तुमसे ये कौन करवा रहा है? तुम्हें ये कहने को किसने प्रेरित किया, जबकि तुम जानते हो कि एक ही उत्तम है और वो परमेश्वर है? हम जानते हैं कि तू मनुष्य की प्रतिष्ठा का सम्मान नहीं करता, न ही उनकी प्रतिष्ठा के वचन की, हम ये जानते हैं। वो उन ढोंगियों को जान गया, समझे? उसको जांचा गया था कि वो कहाँ पर स्थिर था, हर प्रकार से जांचा गया, हमारे समान जांचा गया, परंतु उनको कुछ न मिला। उसका कुल मिलाकर नहीं श्रीमान, वो परमेश्वर का पुत्र था। और मेमना जांचा गया था और 14 दिनों तक रखा गया, जो कि दो सबत थे या दो काल, एक यहूदियों के लिए जो कि उन्होंने प्रतिछाया में मेमना चढ़ाया, एक अन्य जाति के लिए जिनके पास वास्तविक मेमना था, और वे सब इस मेमने का विश्वास करने के द्वारा सिद्ध किए गए आएगा। परंतु वो 14 दिनों तक परीक्षा हुई या परखा गया, 14 दिनों तक वो वचन था। आप पुराने नियम में जांच सकते हैं, कहते हैं ये नए को दोषी ठहराता है, आप गलत हैं, पुराना नियम नए का अभिलेख रखता है। अधिक समय नहीं हुआ, एक व्यक्ति मुझे चुनौती दे रहा था, कहा उसके साथ क्या मामला है, कहा भाई वो पुराना नियम भी सिखाता है, एक मसीह प्रचारक, इसे सोचें, कहा पुराना नियम मर गया और चला गया। ओ नहीं, ओ नहीं, ये केवल एक विद्यालय का अध्यापक है, ये दिखाता है कि दीवार पर क्या लिखा है, समझे? ठीक है। अब देखिए, 14 दिनों तक परखा गया, वो मसीह था। अब ध्यान दें, तब वो सांझ के समय मारा गया, मेमने को मारा ही जाना चाहिए था, मसीह सांझ के समय मारा गया, दोपहर बाद। और फिर ध्यान दें, तब वो भी लहू चौखट पर लगाना था, वो लहू जो पशु का जीवन है, तू उसका मांस खाना, परंतु लहू को जो जीवन है उसे उंडेल देना, समझे? ये होना था, लहू को घर के दरवाजे की चौखट पर लगाना था, जहां बलिदान स्वीकार किया गया था। महिमा हो, जीवन क्या है? वो नाम जो उसने उस व्यक्ति का नाम रखा। दरवाजे पर जाओ और आप देखें कि दरवाजे पर क्या नाम है, पहले कि आप घंटी बजाएं, समझे? लहू दरवाजे की चौखट पर लगाया गया एक प्रतीक के रूप में, कि भीतर क्या बलिदान हुआ था। अब हम आराधना का स्थान पाने जा रहे हैं, ठीक वहीं लहू के द्वारा आ रहा है। ध्यान दें, दरवाजे का लहू बोल रहा था उस नाम को जो कि भीतर था, वे वहाँ भीतर थे, हमारा आराधना स्थल वो मेमना, वो वचन है, हम ये जानते हैं। अब पद चार ध्यान दें, कोई रोटी ना छोड़ना, बलिदान में से कुछ ना छोड़ना या एक लेना, एक से दूसरे युग को वापस जाने का यत्न करो और कहें, भाई अब हम तो लूथरन हैं, हम यहाँ आना चाहते हैं, आपको लूथरन युग के लिए मरना होगा कि वैसली युग में जन्म ले, आपको वैसली युग से मरकर पेंतिकोस्तल युग में जन्म लेना होगा और आपको पेंतिकोस्तल युग में मरना होगा, उसका कुछ भी ना बचे, इसे आग से जला देना क्योंकि ये डंठल के समान जलने जा रहा है, गेहूं उससे बाहर आ जाता है, डंठल नामधारी से इसे जलना ही है, इसलिए अपने नामधारी को इस नए संदेश में ना लाएं। अब ये वचन है, नामधारी यही है डंठल, वो इसे ले गया, ये ठीक है, परंतु ये यहाँ पर आ गया तब डंठल मर गया, ये ढोने वाला था नामधारी, परंतु वचन ठीक आगे बढ़ता है, जी हाँ वचन आगे बढ़ता है। अब पांचवा और छठवां पद लें, ध्यान दें, नहीं अब पांचवा और छठवां पद लें, फतेह को अपने किसी फाटक के भीतर जिसे तेरा यहोवा परमेश्वर तुझे दे बलि ना करना। अब स्मरण रहे, इनमें से किसी फाटक में नहीं, प्रभु आपको इन नामधारियों में अनुमति देता है, ये फाटक जो स्थान तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने के लिए चुन ले, केवल वही, ये फाटक केवल स्थान बहुत से नहीं, ये फाटक परंतु परमेश्वर का एक फाटक है। आप कहते हैं हर प्रातः मैं मेथोडिस्ट के फाटक में प्रवेश करता हूँ, ये आराधनालय, हर प्रातः मैं कैथोलिक के फाटक में जाता हूँ, ओ प्रभु अपने लोगों को उन फाटकों से अंदर बाहर आने जाने देता है, परमेश्वर के लोग कैथोलिक कलीसिया में, मेथोडिस्ट कलीसिया में, प्रेस्बिटेरियन कलीसिया, उन सब में पेंतिकोस्तल में निश्चय ही है, परंतु तुम प्रभु की आराधना फाटकों के भीतर ना करना, समझे, परंतु प्रभु का एक निश्चित फाटक है, महिमा हुए, उसका एक फाटक है, परंतु उस स्थान पर जिसे तेरा प्रभु परमेश्वर अपने नाम के लिए स्थान चुन ले, वहाँ फसह का बलिदान सांझ में करना। रिबका ने इजहाक को कहाँ पाया? एलियाजार ने कब उसे दुल्हन कहा? सांझ के समय, सांझ के समय उजियाला होगा, महिमा का मार्ग आप अवश्य पाएंगे, उस जल के मार्ग से आज उजियाला है, यीशु के बहुमूल्य नाम में गढ़ जाओ, जवान बूढ़े सब अपने पापों से प्राश्चित करो, पवित्र आत्मा निश्चय ही भीतर आएगा, सांझ का उजियाला आ चुका है, ये सत्य है कि परमेश्वर और मसीह एक है, ये इसका आरंभ था। अब तो ये ठीक दुल्हन के उजियाले में टिकी है, देखा मेरा क्या अर्थ था, अच्छा हो कि मैं यहाँ बंद करूँ, आज रात्रि फिर आरंभ करूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इसे छोड़ें। आप देखिए, नहीं नहीं, ये भोजन का समय है, मेरे पास यहाँ बहुत सारी टिप्पणियाँ लिखी हुई हैं। ओ आज रात्रि के विषय में क्या है, क्या ये ठीक रहेगा? ओ ठीक है, यदि आप थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है तो फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, हम जल्दी करेंगे, ये कैसा है? अब भीतर जाएं, कहाँ? आप किसी फाटक के भीतर नहीं जाएंगे जो प्रभु परमेश्वर तुम्हें देता है, परंतु उस फाटक पर जहाँ प्रभु अपना नाम रखेगा। घर में नहीं जाना, फाटक में जो कि द्वार है, ये ठीक है, परमेश्वर अपना नाम द्वार पर रखने जा रहा है और तुम नहीं, ये द्वार आराधना के स्थान में जाता है, मंदिर गर्भ में, तुम अपने बलिदान के साथ इन फाटकों में मत जाना, परंतु उस फाटक में जिसे प्रभु परमेश्वर ने अपना नाम रखने के लिए चुन लिया, समझे। अब क्या उसने ये किया, वो फाटक कहाँ है? संत यूहन्ना 10, यीशु ने कहा, फाटक द्वार मैं हूँ, परमेश्वर के घर का द्वार मैं हूँ, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ, ना कि बकरी के झुंड का, भेड़शाला, समझे, भेड़ों का द्वार मैं हूँ, एक मनुष्य इस द्वार में प्रवेश कर सकता है सुरक्षित। अब हम इस पर लंबे समय तक टिक सकते हैं, परंतु समय बचाने को वो भेड़शाला का द्वार है। अब हम यहाँ ध्यान देना चाहते हैं, छाया और प्रतिछाया वास्तव में यहाँ दृश्य में है, परंतु मैं यदि मैं इस पन्ने को लूँ तो ये तुम्हें थोड़ी देर रोकेगा। ठीक है, ध्यान दें, ये सिद्ध दृश्य लाएगा यीशु मसीह का, क्योंकि सारा पुराना नियम इसकी प्रतिछाया है, सारे पर्व, सारी आराधनाएं और सारी चीजें। और मैंने यहाँ लिख रखा है वचनों की इन पंक्तियों के नीचे इसका खुलासा, यही जहाँ ये लंबा समय लेगा, इस बात की व्याख्या कैसे ये सारे पर्व, यहाँ तक कि अन्न बलि मसीह की प्रतिछाया है। आइए हम एक को लें। एक समय एक विद्यालय था जो कि सेवकों का विद्यालय कहलाता था, या भविष्यद्वक्ताओं का विद्यालय। वे प्रशिक्षित किए गए शिक्षित भविष्यद्वक्ता, और एक वास्तविक था, परमेश्वर का बुलाया हुआ भविष्यद्वक्ता। एक बार वहाँ उनसे मिलने गया। वो उस बूढ़े नबी को शिष्टाचार दर्शाना चाहते थे, इसलिए एक उनमें से बाहर गया और जो उसने सोचा कि मटर या फलियां हैं तोड़कर ले आया, परंतु वो तो विष फल था और वो उसे उन सबको खिलाने जा रहा था। और हमारे कितने धर्म विद्यालय भरे हुए हैं, समझे? ठीक है, वे कुछ बना रहे हैं, देखा, उनके पास मेथोडिस्ट भरे पड़े हैं, बैप्टिस्ट भरे पड़े हैं, पेंटिकॉस्टल भरे पड़े हैं, परंतु आप देखिए वे दूसरी उपज हैं, वो प्रकार जिसे पेड़ से छांटा जा सकता है। देखिए मूल दाखलता में नहीं, जो नींबू और खट्टे और आदि आदि अपने में रखती है, न कि संतरे, परंतु रसेदार कहलाते हैं। फिर ध्यान दें, अब इसमें जब एरिया आया और उन्हें देखा और देखा कि ये विष वाली फली है जो कि इन सबको मार डालेगी, उन्होंने कहा हाय, हांडे में मृत्यु है। उसने कहा मेरे पास थोड़ा सा आटा लाओ, और उसने ये उसमें डाल दिया। उसने कहा अब ये ठीक है, खाओ जो तुम चाहते हो, मैंने मृत्यु को जीवन में बदल दिया। और अन्न बलि जो दी गई थी मसीह, वो अन्न बलि था, और अन्न बलि को विशेष प्रकार की चक्की में पीसा जाना चाहिए जो कि उसके हर छोटे छोटे भाग को एक सा कर दे, जो दर्शाता है कि वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। वो एक सा ही है जिसे आपके नामधारी में मिलाया जाए, और ये जीवित रहेगा, वचन मसीह वचन है, हर चीज का प्रतीक, आराधनालय, भेंट की रोटी, हर चीज, टूटी शुद्ध रोटी प्लेट के नीचे उसकी टूटी हुई देह थी, जो कि यहूदी अब भी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि वे ये क्यों करते हैं, समझे? और ये सारी चीजें उसकी छाया, अब वो दृश्य में है। अब हम सारे नामधारियों को देखते हैं, मत्सार पीछे छूट गए हैं, क्योंकि वो शुद्ध है, परमेश्वर का ना बदलने वाला वचन, जो कि अखमीरी रोटी है, संत यूहन्ना एक, ये ठीक बात है, वो अखमीरी रोटी है, इसलिए आप इसको मिलाएं या उसे मिलाएं, ये खमीर उसमें मिलाया गया है जो कि आपको पहले मूल रूप में दिया गया था। यहाँ देखिए, आज जाति को कौन मार रहा है, वे लेते हैं और चीजों में मिलावट करते हैं, और जब आप मिलावट करते हैं आप इसे मार डालते हैं। ओ, ये बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है, निश्चय ही मिलावटी अनाज, खीले और सारे हलवे जो अनाज में से निकलते हैं, मिलावटी अनाज, बड़ा, मोटा, लंबा डंठल और बड़ी बड़ी बालें जो हैं इसे दुगना सुंदर, परंतु ये मृत्यु है। यहाँ तक कि विज्ञान ने भी ये मालूम कर लिया है, समझे, मिलावट ना करें, ये आपको मार डालेगा। अब यहाँ मैं आपको दिखाऊं, उस दिन मैं अपने आंगन में कुछ फूलों को पानी दे रहा था, और महिला के पास कुछ मिलावटी फूल जो यहाँ छोटे बर्तन में थे, घर के पास छोटे छोटे पौधे, हमें उनको सप्ताह में तीन बार पानी देना होता है, या चार बार, या तो फिर वो मर जाएंगे। और वहाँ आंगन में एक मूल पौधा खड़ा था, 6 महीने से वर्षा नहीं हुई थी, वैसे ही सूखा, यदि वर्षा होती तो 10 मिनट बाद आप धूल फूंक कर उड़ा सकते थे, परंतु ये नन्ना पौधा वहाँ पर था, वैसे ही सुंदर और चमकदार, बजाय उस मिलावटी के जो सारे पानी के साथ था। आप उसे पानी से अलग कर दें, वो मर जाएगा, परंतु वो अपना पानी कहाँ से लेता है? और दूसरी बात, आपको साथ साथ उसे प्रतिदिन या दो उस पर छिड़काव करना है कि कीड़ों को उससे दूर रखें, यदि नहीं तो कीड़े उसे खा डालेंगे, वो इतना कोमल है और हल्का है। परंतु ये सारे कीड़े उस मूल को नहीं खा सकते, नहीं नहीं, नहीं। वे उसके पास आएंगे और वापस हो जाएंगे, वो मूल है, देखिए मिलावट ने क्या किया है। कलीसिया में यही बात है, वे नामधारी और वचन को मिलाना चाहते हैं और वचन से चाहते हैं कि वही कहें जो नामधारी कहता है। और जब आप ये करते हैं तो आपको उस पर छिड़काव करना पड़ता है और उनकी देखभाल और संडे स्कूल आने के लिए गोल्ड स्टार देनी पड़ती है और बहुत कुछ। ये ठीक बात है, जब मूल नया जन्म प्राप्त मसीही परमेश्वर के वचन से जन्म लेता है तो वो कठोर होता है। वो आप हैं, वे कीड़े और संसार की चीजें उसे परेशान नहीं करती। वो उकाब है, वो उड़कर पार कर लेता है, देखिए आकाश में मंडराते हुए, समझे? ये सत्य है और कुछ नहीं। ध्यान दें, अब हमें यहाँ साफ समझ जाना चाहिए, नामधारी मत्सार और कोई भी चीज जो खमीरी रोटी में मिलाया जाता है वो अखमीरी में नहीं मिला सकते। और यहाँ बाइबल, यहाँ पवित्र भोज की पूर्व छाया में आराधना में जाने के लिए, ताकि कोई भी अखमीरी अपने संग ना ले सके और परमेश्वर इसे स्वीकार करेगा। आप कहते हैं मैं मेथोडिस्ट हूँ, ठीक वहीं आप मर गए। मैं पेंटिकॉस्टल हूँ, आप मर गए। मैं मसीह का हूँ, ये ठीक बात है। आपको किसी चीज पर खड़ा होना है, ये ठीक बात है। आप किसी चीज पर खड़े हैं। एक बार चर्चिल ने कहा, दो उंगलियां उठाई और कहा हमें जीत मिल गई, और इंग्लैंड इस पर टिका रहा। उन्होंने चर्चिल का विश्वास किया। और विश्वास करें या ना करें, आज प्रातः आप किसी चीज के साथ खड़े हैं। केवल एक ही चीज है जिसे आप सकते हैं और बराबर में खड़े हो सकते हैं, और वो मसीह वचन सत्य है। ध्यान दें, बाइबल में नामधारी की कोई प्रतिछाया नहीं सिवाय बाबुल के, और बाबुल निमरोद के द्वारा बसाया गया, और निमरोद एक स्वधर्म त्यागी या विश्वासघाती था। उसके पास वहाँ महिलाओं का झुंड था जो उसकी रानी समझी जाती थी, वो भविष्यद्वक्तनी थी। वे ये भी सोचते हैं कि वो पुराना बालाम उसी भाग से आया, उनका वंश आदि था। उन्होंने आराधना की, आप जानते हैं, आप में से बहुत से ज्ञानी जो हिस्लॉप के दो बाबुल पढ़ रहे हैं और आदि आदि, और कलीसिया का इतिहास और कैसे उन्होंने किया, और उनके पास स्त्रियां थी जिन्होंने ये किया, और स्त्रियां एक देवी और सब कुछ, और ये जबरदस्ती का धर्म। हर कोई बाबुल के आसपास के नगर बाबुल आने के लिए विवश थे कि निमरोद की अधीनता में उस मीनार पर आराधना करें, समझे? ये ठीक बात है, वे इसे करने के लिए विवश थे। इसका वाद विवाद वहाँ जहाँ भ्रम आता है, और आज ठीक ऐसे ही कलीसियाएं हैं। यदि आप संडे स्कूल नहीं आते, यदि आप ऐसा नहीं करते, इसे करने के लिए आपको किराया देना है, ये और वो करना है, नहीं तो दृश्य से बाहर। वहाँ टूसान में आज प्रातः सुन रहा था, एक बार मुझे आश्चर्य हुआ, मैं सदा लोगों पर दबाव डालता आराधना ले जाइए, कोई मतलब नहीं आप कहाँ जाते हैं। और मैंने देखा लोग एक प्रकार से पिछड़ रहे थे और इस ओर जा रहे थे, और मैंने सोचा क्या बात है। मैं उनमें से कुछ के पास गया, पहले दिन आप वहाँ पर थे, वे आपसे मिलेंगे, हमारी कलीसिया में आए। यदि आप ये नहीं करते हैं तो आपका स्वागत नहीं है, समझे? ये विवश करने वाली बात, ये आप पर दबाव, और ये बाबुल है। परंतु मसीह में आप चुनाव द्वारा आते हैं, न कि विवशता से। आपका हृदय आपको भीतर खींचता है। तो फिर परमेश्वर ने अपना नाम बाबुल में नहीं रखा। अब ध्यान से, वो अपना नाम बाबुल में नहीं रख सकता, कलीसियाओं में वे उसका नाम वहाँ रखते हैं, परंतु उसने कभी नहीं। आप कहते हैं अच्छा भाई ब्रैनम, रुकिए रुकिए जरा एक मिनट, शांत बैठिए। आपने कहा कि और थोड़ी देर रुकें, ठीक है। अब ध्यान दें, उन्होंने उसका नाम वहाँ रखा परंतु उसने नहीं। अब उसने कहा वो स्थान जहाँ मैं तुमसे मिलने जा रहा हूँ और तुम्हारे बलिदान स्वीकार करने जा रहा हूँ, जहाँ मैं अपना नाम रखने के लिए चुना है। आप इस फाटक के अंदर आए, ये द्वार जहाँ मैंने अपना नाम रखने के लिए चुना है, यही जहाँ तुम आओ। ठीक है, उन्होंने रखा, ये मसीह की कलीसिया है। यदि इस घोषणा में कोई गलती है तो उन्होंने एक शब्द छोड़ दिया, विरोधी। ओ, वो सब जो उसने सिखाया वे इससे असहमत हैं, आधुनिक फरीसी। परंतु हमें ढूंढना है कि उसने अपना नाम कहाँ रखा है, क्योंकि ये उसका केवल दिया गया फाटक है। आमीन, महिमा हो। ध्यान दें, उसने अपना नाम कहाँ रखा है, अपने पुत्र में। ओ, आप कहते हैं भाई ब्रैनम, अब एक मिनट रुकिए, वो पुत्र था ना कि पिता। पुत्र सदा अपने पिता का नाम लेता है, हम मामले में मैं इस पृथ्वी पर ब्रणम नाम से आया हूँ क्योंकि मेरे पिता का नाम ब्रणम था। यीशु ने कहा मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे स्वीकार नहीं करते। आप इस पर वचन चाहते हैं? संत यूहन्ना 5:43। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे स्वीकार नहीं करते। तब पिता अपना नाम देता है जो कि यीशु है पुत्र में, और वो मार्ग है, वो द्वार है, वो घर है, वो जहाँ परमेश्वर ने अपना नाम रखने के लिए चुना है। परमेश्वर ने अपना नाम मुझ में कभी नहीं रखा, उसने कभी भी कलीसिया में नहीं रखा, उसने कभी भी मेथोडिस्ट बैप्टिस्ट कैथोलिक में अपना नाम कभी नहीं रखा, परंतु उसने इसे मसीह में अभिषिक्त इमैनुएल में रखा, और नाम वचन है क्योंकि वो वचन है। आमीन। तो फिर वो क्या है? अनुवादित किया गया वचन परमेश्वर का प्रकट हुआ नाम है। कोई आश्चर्य नहीं, मांस और लहू ने ये तुझ पर प्रकट नहीं किया कि मैं कौन हूँ, और इस चट्टान पर मैं अपना आराधना का स्थान बनाऊंगा, और अधलोक के द्वार इसे हिला नहीं सकते। आमीन। ओ परमेश्वर की जीवित कलीसिया केवल यीशु मसीह की ठोस नींव पर खड़ी है। आप गाना गा सकते हैं, परंतु यदि आप मसीह वचन पर नहीं हैं, तो आप धसने वाली रेत पर हैं। परंतु इस चट्टान पर मसीह, मेरा वचन, उसने लूथर का संदेश बनाया और उन्होंने इसे संस्थागत यानी नामधारी कर दिया। ये बढ़ रहा था पादपीठ, तब वो पैर वाले भाग में बढ़ा, मेथोडिस्ट आदि, वहीं जहां उसने अपनी कलीसिया बनाई अपने वचन पर। अब वो सारा पैर या जांग नहीं है, वो देह है। और अब ऊपर वाला भाग, क्या आपने पैरामिड में ध्यान दिया? जो कि मैं पैरामिड धर्म नहीं प्रचार करता अब, परंतु पहली बाइबल जो कभी लिखी गई वो आकाश में लिखी गई, जेडो। क्या आपने इस पर ध्यान दिया? ये कन्या से आरंभ हुआ राशि चक्र का पहला आकार, अंतिम आकार लियो, सिंह। वो पहले कुंवारी के द्वारा आया, आगे वो सिंह यहूदा के गोत्र का कर्क यानी कैंसर से थोड़ा पहले आर पार रखी मछली। बाकी सारे युग, यदि हमारे पास इसमें होकर जाने का समय होता, जो कि हमारे पास आराधनालय में है। पैरामिड वो आधार होने के नाते, वो राजा के कक्ष तक और सातवीं दीवार के पहुंचने के थोड़ा पहले, वहाँ छोटा सा परिचय का तख्ता वहाँ पर है, जहाँ संदेशवाहक बाहर आता है कि आपको राजा के पास पहुँचाए। संदेशवाहक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसने राजा का परिचय कराया, परंतु चोटी का पत्थर अस्वीकार किया गया, और वे नहीं जानते चोटी का पत्थर या ये जो भी है, वे नहीं जानते कि ये कहाँ पर है, क्योंकि ये अस्वीकार किया हुआ पत्थर है। परंतु यही पत्थर है जो सारी चीजों को ढांकता है, जो इसे पिरामिड बनाता है, इस पूरी सात कलीसिया युगों से। अनुग्रह मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया, वहाँ साथ मिलाए, अंतिम मसीह है। इसमें अपना प्रेम मिलाया, अपना अनुग्रह आपके अनुग्रह में मिलाया, कुछ और मिलाया, कुछ और मिलाया, जब तक मसीह पर ना पहुँचे, जो चोटी का पत्थर है और मैं द्वार हूँ। अब पुत्र सदा अपने पिता के नाम में आता है, कोई भी पुत्र अपने पिता के नाम से आता है, और यीशु ने कहा मैं अपने पिता के नाम से आता हूँ। तो फिर पिता का क्या नाम है, पुत्र का क्या नाम है? और उसने कहा और थोड़ी देर बाद संसार मुझे और ना देखेगा, तो भी तुम मुझे देखोगे। जी हाँ, वो पवित्र आत्मा के रूप में आता है, वही यीशु। यही कारण है कि वे आराधना कर रहे थे, ओ यीशु। समझे? समझे? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये प्रभु यीशु मसीह है, बस यही है। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। अब याद रखें, उसने यहाँ मिलाया भी और हमें चेतावनी भी दी, दूसरे आएंगे, एक नामधारी एक मत्सर, वे अपने नाम में आएंगे और तुम उन्हें ग्रहण करोगे। तुम मुझे ग्रहण नहीं करते, प्रमाणित वचन, और आपके सामने सिद्ध हुआ, जैसे वो तब था वैसे ही वो आज है। इसमें चूके नहीं, इस राष्ट्र के लोगों, दूसरा आएगा, एक कलीसिया, और तुम उसका विश्वास करोगे, क्योंकि तुम उसे कैसे भी कर सकते हो। मैं इसे प्रमाणित नहीं करूंगा, उसने कभी नहीं कभी किसी भी समय नहीं किसी चीज को प्रमाणित किया किसी भी कलीसिया में इस संदेश के बाहर जो दिया गया था। लूथर का न्यायोचित, वेस्ली का पवित्रकरण, पेंटिकॉस्टल वरदानों की वापसी, और जैसे ही उन्होंने इसको नामधारी संस्था बनाई वही मर गए। वचन में देखो, परंतु उसने कहा मैं अपना नाम रखने के लिए स्थान चुनूंगा, और नाम यीशु था और यीशु वचन था। संत यूहन्ना 1, क्या ये ठीक बात है? ये आराधना का स्थान है मसीह में वचन। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ। नबी ने कहा उसका नाम इमैनुएल कहलाएगा। ये मत्ती 1:23, यदि आप चाहें तो लिख लें वहाँ नीचे यीशु, यहोवा बचाने वाला। अब पांचवा पद ये दर्शाता है कि वो द्वार है। अब तक बहुत से अनदेखे प्रमाणों के द्वारा ये फाटक और नाम और स्थान सिद्ध कर सकते हैं कि केवल वही एक स्थान है जहाँ आराधना में परमेश्वर मनुष्य से मिलता है, और ये जब वो मसीह में है। अब प्रश्न है हम उसमें कैसे आए। अब ये थोड़ा सा चुभ सकता है, परंतु आप जानते हैं ये दवा लेने के समान है। यदि ये आपको बीमार ना करे ये आपका कुछ भला नहीं कर सकता। अब लूथरन एक प्रकार से भीतर आना चाहते थे, लूथरन कलीसिया के सदस्य बनने के द्वारा। मेथोडिस्ट चिल्लाने के द्वारा अंदर आना चाहते थे। पेंटेकोस्टल अन्य भाषा बोलने के द्वारा भीतर आना चाहते थे। ये अभी तक नहीं है, समझे? नहीं, ये तो वरदान इत्यादि हैं। परंतु पहला कुरिन्थियों 12 कहता है एक ही आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जो कि वचन का जीवनदायक है, बीज का, उस बीज को प्रमाणित करने की कि बीज उस ऋतु के लिए है, समझे? यहाँ मेथोडिस्ट युग है, बीज पड़ा है, वहाँ पर इसने पवित्र आत्मा को लिया है कि बीज को जीवन में लाए और शुद्ध पवित्रकरण के द्वारा कलीसिया को शुद्ध करे। लूथर ने यह प्रचार नहीं किया क्योंकि वह इसे नहीं जानता था। पेंटेकोस्टल ने भाषाओं में बोलना चाहा कि वरदान वापस आए, प्रत्येक ने घोषित किया यही है, समझे? परंतु एक ही आत्मा के द्वारा हम सब ने एक ही देह में बपतिस्मा लिया, और वो देह एक परिवार है, परमेश्वर का परिवार, और ये परमेश्वर का घर, और परमेश्वर का घर यीशु मसीह का नाम है, प्रभु का नाम, सामर्थ की मीनार। धर्मी उसमें भाग जाते हैं और सुरक्षित रहते हैं। अब आप कैसे उपाधि के द्वारा इसमें आते हैं? कैसे आपका चेक ये कहने से प्राप्त होगा आज्ञा से भुगतान करें आदरणीय डॉक्टर सेवक को, समझे? देखा, आप भी आदरणीय डॉक्टर सेवक हो सकते हैं, परंतु प्रभु का नाम यीशु मसीह है, समझे? मैंने अपनी आराधना के लिए घर के द्वार पर नाम लिखने को चुन लिया है अपने परिवार के लिए, ताकि वे वहाँ लहू के नीचे एकत्र हों, जैसे ये मिस्र में था। इसके बाहर कुछ भी मरा हुआ है, और वहाँ उसमें कोई खमीरी रोटी नहीं है, इसमें कहीं भी नामधारी की मिलावट नहीं है। मेरा घर, मेरे बालक, मेरे गुण सूत्र से उत्पन्न हुए। आमीन, परमेश्वर की महिमा हो। मेरे गुण सूत्र उनमें है, मेरा, मैं अपना वचन उनमें रखूंगा, मैं उनके हृदय की पटिया पर लिखूंगा। ये मेरा परिवार, यीशु मसीह की देह का परिवार, परिवार। और ये द्वार, आप इसमें अंदर आएंगे, ना कि मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट या पेंटिकॉस्टल, परंतु द्वार में जहाँ मैंने अपना नाम रखा है। ये मेथोडिस्ट का नहीं है, परमेश्वर का नाम मेथोडिस्ट नहीं है, परमेश्वर का नाम पेंटिकॉस्टल नहीं है, परमेश्वर का नाम बैप्टिस्ट नहीं है, परमेश्वर का नाम कैथोलिक नहीं है, तो फिर इन दरवाजों से दूर रहें, समझे? परंतु उस स्थान में जहाँ मैंने अपने नाम को रखने के लिए चुना है, अब बाइबल में कहीं भी दूसरा स्थान नहीं है जहाँ परमेश्वर ने कभी अपना नाम रखा हो, केवल यीशु मसीह में, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर के नाम को लिया, और परमेश्वर का मनुष्य नाम, और स्वर्ग के नीचे और नाम नहीं दिया गया जहाँ से आप बच सकें। मैं चिंता नहीं करता मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, प्रश्नोत्तरी या जो भी आप करना चाहते हैं, केवल यीशु मसीह के नाम के द्वारा जहां हर घुटना झुकेगा और हर जुबान स्वीकार करेगी कि वही प्रभु है। इस प्रकार से आप भीतर आ सकते हैं। यदि आपने जल में सही सही बपतिस्मा लिया है और फिर वचन का इनकार करते हैं तो आप अवैध हैं। आपका जन्म ठीक नहीं था। आप दावा करते हैं कि आप उसका विश्वास करते हैं और फिर आप उसका इनकार करते हैं। मैं कैसे अपने परिवार का इनकार कर सकता हूँ? जब मैं कैसे चार्ल्स ब्रैनम का इनकार कर सकता हूँ कि मेरे पिता हैं? द्वार पर लहू की जांच ये दर्शाती है। ओह, मेरा व्यवहार मेरे जीवन में परमेश्वर के वचन का प्रमाण दर्शाता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ या नहीं। अब केवल एक ही स्थान है, केवल यही स्थान है जहाँ परमेश्वर तुम्हारा बलिदान स्वीकार करेगा। मैं चिंता नहीं करता कि आप कितने ईमानदार हैं, मसीह में हैं। और स्मरण रखें, आप कहते हैं ठीक है, मैंने विश्वास किया, मैं भीतर भी आया। स्मरण रहे, बाइबल कहती है, आप कहते हैं कि बाइबल ने कहा, जो कोई भी यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, विश्वास करता है, बच गया, बच जाएगा। ये कहती है, परंतु स्मरण रखें, ये भी लिखा है, कोई यीशु को बिना पवित्र आत्मा के मसीह नहीं कह सकता, समझे? आप कह सकते हैं वो है, परंतु वो नहीं है जब तक पवित्र आत्मा स्वयं न कहे, जो वचन को जीवन देता है, इसे प्रमाणित करें कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। ये वचन है। वो स्थान जिसे मैंने अपना नाम रखने के लिए चुना है, आप किसी और द्वार पर आराधना नहीं करेंगे, परंतु उस द्वार पर जहां मैंने अपना नाम रखा है, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तुम मेरा परिवार हो। अब परमेश्वर का परिवार परिवार के पिता की आज्ञा का पालन करता है और वो शांति का राजकुमार है, सामर्थी परमेश्वर, सदाकाल का पिता, और उसकी प्रभुता और राज्य का अंत ना होगा, प्रभुता उसके कंधे पर होगी, क्योंकि वह अधिकारी होने के नाते राजा इमैनुएल, पहला अंतिम, शांति का राजकुमार, सामर्थी परमेश्वर, सदाकाल का पिता, उसका हर बालक उसके हर वचन का पालन करता है, क्योंकि वे उसका भाग हैं। हम अपने परिवार में वैसे रहते हैं जैसे बर्नम रहते हैं, आप अपने घर में रहते हैं जॉनसंस जैसे जॉनसंस रहता है, और परमेश्वर के घर में हम वचन के द्वारा रहते हैं, और प्रत्येक जो परमेश्वर के मुख से निकलता है और कोई दूसरी धोखेबाजी, हम उसकी नहीं सुनेंगे, समझे? तुम खमीरी रोटी खाओगे हर कलीसिया काल में जैसे मैंने आपको दी, परंतु वापस मुड़कर यत्न न करना कि इसमें कुछ मिलाएं, क्योंकि ये डंठल में आ गया है। हड्डी आदि लेंगे जो कि बलिदान से बचा है और उन्हें जलाएंगे, समाप्त हो गया, कलीसिया युग मर गया, आगे बढ़ा, अब हम दूसरे वाले में हैं। आमीन। वो स्थान जो मैंने अपना नाम रखने के लिए चुना है, ओ पहला कुरिन्थियों 12, ध्यान दें, इफिसियों 4:30, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर अगली बेदारी छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन तक के लिए छाप दी गई है। अब ध्यान दें, हम इसे अपने वचन के पाठ पर लागू करें, तब अच्छा हो कि हम आगे चलें। मैं सोचता हूं कि मैं लोगों को थका रहा हूं, क्या नहीं? लोग उठकर घर जा रहे हैं क्योंकि उन्हें अपना खाना बनाना है, कोई और जाना चाहता है। उन्होंने आशा नहीं की थी कि आकर सारे दिन सुनेंगे, देखा, परंतु देखिए, आप जानते हैं। बिन, मुझे आप पर कार्य करना चाहिए, तुम्हें आशीष मिले। धन्यवाद भाई बेन, मैं आपसे प्रेम करता हूँ भाई बेन। यदि आप जानते, उस लड़के ने हमारे लिए युद्ध में कितना दुख उठाया, उसे टुकड़े टुकड़े उड़ा दिया और सब कुछ, उसके पास हर चीज का जीवन था, परंतु परमेश्वर ने उसे आशीषित किया, वो सच्चा बना रहा। उसकी पत्नी उसे छोड़ गई, भाग गई और फिर विवाह कर लिया और उसके बालक ले गई। ओ, मैं इस विषय पर नहीं सोच सकता, परंतु जो भी हो बेन, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। वो टूटी किर्चों से भरा हुआ है, उसके तंत्रिका तंत्र के विरुद्ध दबाव में है, और सारी बातें आपको बेन की पृष्ठभूमि को जानना ही चाहिए। आप देखिए, परमेश्वर उस लड़की को आशीष दे। हाँ, जहाँ तुम छुटकारे के दिन के लिए मोहर बंद किए गए हो, ध्यान दें, ये भी आपको थोड़ा चुभेगा, परंतु ध्यान दें, मेरे साथ ना गिरें, स्मरण रखें। जब एक बार इसराइल ने उस द्वार पर देखा, द्वार पर उस लगे हुए लहू के साथ नाम लहू जीवन, और उस लहू के नीचे से प्रवेश किया, वे कभी बाहर ना निकले जब तक कि वे मिस्र से बाहर ना निकले। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित ना करो जहां आप प्रवेश करते हैं और फिर बाहर ना निकलें जब तक कि आपका छुटकारा ना हो ले। समझे? आप जानते हैं कि बाइबल सदा सही है, उसने वचनों को उसमें रखा है। आपको इसे वहां रखना है जहां ये जाता है कि छुटकारे का पूरा चित्र बनाए। समझे? देखा? परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिसमें जब तक तुम्हारा छुटकारा ना हो मोहर बंद रहो। तुम्हारा छुटकारा होने तक तुम उसमें मोहर बंद हो, तुम लहू के नीचे हो, अब आप बाहर नहीं जाते। अब तो फिर आप क्या हैं? परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के परिवार में पवित्र आत्मा के द्वारा मोहर बंद किए गए। शैतान तुम्हें नहीं ले सकता यदि वो चाहे भी, क्योंकि आप मरे हुए हैं। आपका पुराने पति का भाग मर गया और आप गाड़े गए, और आपका जीवन मसीह के द्वारा परमेश्वर में छिपा है, और पवित्र आत्मा के द्वारा आप मोहर बंद किए गए हैं। वो कैसे तुम्हें लेने जा रहा है? आप कैसे बाहर जाने वाले हैं? आप वहाँ हैं, महिमा हो। अब मैं इसे छोड़ दूंगा, ये पर्याप्त है ताकि आप जान जाएंगे कि मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ। फिर एक नई सृष्टि, न कि एक नामधारी, परंतु वचन को, आप वचन की सृष्टि हैं, क्योंकि नेव का पत्थर आप में संसार की सृष्टि से पहले रखा गया, परमेश्वर के पुत्र पुत्रियों पहले से ठहराए गए। और इस पत्थर पर पत्थर आता है प्रत्येक युग में, ये प्रमाणित करने के लिए कि वचन आ रहा है, ठीक वैसे ही जैसे यीशु ने अपने युग में किया, जो कि सबका चोटी का पत्थर है, उसी में सारे युग रखे हैं। यीशु में मूसा था, यीशु में दाऊद था, यीशु भविष्यद्वक्ता, ये क्या ठीक बात है? यूसुफ को देखिए, लगभग 30 चांदी के सिक्कों में बेचा गया, फेंका गया, ये मानकर कि मर गया, बाहर निकाला और गया, फिर उनके दहने हाथ बैठा। देखिए, ठीक यीशु था, यूसुफ यीशु में था, और जब वो आया वो राजाओं की परिपूर्णता या भविष्यद्वक्ताओं का, हालेलुया, परमेश्वरत्व ने उसकी देह में विश्राम किया। वो एक दुल्हन को छुड़ाने आया, एक सर्वोत्तम रचना, एक सर्वोत्तम रचना जो शैतान से ये कहती है, जब वो कहता है कि आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके विषय में तुम बातें कर रहे हो, शैतान मुझसे दूर हो। समझे? एक सर्वोत्तम रचना खड़ी है और एक सुरक्षा दे रही है। किसी समय चोटी का पत्थर वापस आएगा, सबका सिर, और दुल्हन को अपने लिए ले लेगा। स्त्री जो कि पुरुष में से ली गई है, एक मनुष्य का भाग, पुरुष का गुणसूत्र स्त्री में है जो स्त्री को बनाता है, और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कलीसिया में है जो कि कलीसिया को दुल्हन बनाता है, ना कि एक नामधारी संस्था, वो शैतान की है। उनमें से प्रत्येक, मैं उसमें के लोगों को नहीं कह रहा हूँ, वे बेचारे धोखा खाए लोग हैं, जैसे यीशु ने कहा, अंधा अंधे को मार्ग दिखाता है और वो उन्हें बाहर नहीं बुला सकता, और उन्होंने कहा, क्यों तू व्यभिचार से जन्मा, किसने तुझे यहाँ आने को कहा, कौन सा विद्यालय, कौन से धर्म विद्यालय ने तुझे मान्यता दी है? यहाँ हमारे पास मूसा है, हम लोग, उसने कहा, यदि तुमने मूसा को जाना होता तो मुझे भी जानते, क्योंकि मूसा ने अपनी चार पुस्तकों में लिखा है, तुम्हारा प्रभु परमेश्वर एक वचन को देने वाला उठाएगा, एक भविष्यद्वक्ता मेरे समान, जो उस भविष्यद्वक्ता की नहीं सुनेगा वो लोगों के बीच में से काटा जाएगा। इसका बस यही है, और वो क्या है? वचन। और ये क्या है? कोई भी खमीर ना छोड़ना, अपने बीच में कोई खमीर ना रखना, कोई मत्सार ना मिलाना, कोई नामधारी, क्योंकि वो दूषित है, तुम्हारा बलिदान बेकार हो जाएगा। आइए जल्दी जल्दी करें, जल्दी से, ताकि आप जा सकें, खा सकें। ध्यान दें, और फिर आप परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के घर में, आप परमेश्वर की व्यवस्था के भाग हैं, रोमियो 8:1। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे संसार के लिए मर गए और उसमें जीवित हैं, और आज के दिन जीवित हैं, परमेश्वर ने जो उनके लिए वचन प्रयोग किया, वचन बन रहे हैं, उन्हें पहले से ठहराया, उनके नाम को दुल्हन की पुस्तक में रखा है, और जब जल उस बीच पर आता है हृदय के अंदर, इसे मसीह की दुल्हन में बढ़ाता है। ओ प्रभु, ऐसे ही सिद्ध जितना हो सकता है, हर युग में इसी प्रकार से लूथरन न्यायोचितता में पैर इस प्रकार से बढ़े, वैसरी पवित्रकरण में पेंतिकौसल हाथों के नीचे कार्य कर्म आदि आदि, कॉल्विनवादी होना ही था या आर्मेनियन होना ही था, विधिवादी होना ही था, परंतु अब हम सिर तक आ गए। चोटी का पत्थर, अनुग्रह अनुग्रह, चोटी का पत्थर चिल्लाया। चोटी का पत्थर क्या चिल्ला रहा है? अनुग्रह अनुग्रह। मृत्यु और धर्मसार से पार होकर जीवित परमेश्वर के जीवित वचन में आ गए। परमेश्वर की केवल प्रदान की गई योजना उसके युग में, उसके पुत्र वचन के युग में आत्मा के द्वारा जलाए गए। एक चिंगारी के समान जो किसी चीज को प्रज्वलित कर जीवित कर दे, और अब स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं वचन में हर प्रतिज्ञा के लिए। तब ये क्या करता है? आप परमेश्वर के एक गुणसूत्र जीन होने के नाते वचन के भाग, दूसरे मनुष्य परमेश्वर के वचन के एक भाग एक साथ बैठे हैं, मसीह की पूर्ण देह को प्रकट करते हैं, क्योंकि तुम्हारे मध्य में कोई खमीर नहीं है। देखिए वो किस विषय में बात कर रहा है, भाई ब्राउन। तुम्हारे बीच में कोई खमीर नहीं, केवल वचन। स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, द्वार में जहाँ उसने अपना नाम रखा है, मसीह यीशु। तुम्हारे बीच में कोई खमीर नहीं है, जो कि तुम्हारे मध्य में परमेश्वरत्व की देह को समस्त पूर्णता को लाता है। लूथर के युग में ये नहीं हो सकता था, वेस्ली के युग में ये नहीं हो सकता था, पेंटिकॉस्टल युग में नहीं हो सकता था। परंतु उस दिन जब मनुष्य का पुत्र प्रकट प्रत्यक्ष होगा, कलीसिया को परमेश्वर के सारे परमेश्वरत्व के साथ अपने लोगों में ले आएगा। दिखने वाले चिन्हों को दर्शा रहा है, स्वयं को वैसे ही प्रकट कर रहा है जैसे आरंभ में किया, जब वो पृथ्वी पर भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के रूप में प्रकट हुआ था। ओ महिमा हो। मलाकी चार के द्वारा प्रतिज्ञा दी गई, बाकी वचनों के द्वारा प्रतिज्ञा दी गई। आप कहाँ आराधना करते हैं? परमेश्वर का घर बैठे हैं वर्तमान काल में। अब जल्दी से हम जल्दी तेजी से देखें और हम इसमें जाएंगे, 10 मिनट में हम चले जाएंगे प्रभु चाहेगा तो। आइए हम कुछ को देखें जो कि अपने युग में परमेश्वर के घर में जिलाए गए। हनोक, 10 मिनट में हम चले जाएंगे यदि आप इतना सहन करें। देखिए, हनोक परमेश्वर का जीवित वचन था, अपने युग में वो एक नबी था, भविष्यद्वक्ता परमेश्वर का परावर्तक है। कितने ये जानते हैं, परावर्तक स्वयं को परिवर्तित नहीं करता, परावर्तक प्रतिबिंब नहीं है। किसी चीज को परावर्तक से टकराना होता है, परावर्तक उसे परिवर्तित करता है। इसी प्रकार से भविष्यद्वक्ता परमेश्वर का चुना हुआ पात्र होता है, वो कुछ और कभी भी परिवर्तित नहीं करता, परंतु वो परावर्तन की सीधी रेखा में होता है परमेश्वर के, कि मसीह के वचन को उसके रूप में परिवर्तित करे। देखिए, वो कुछ और नहीं कर सकता। आप एक परावर्तक हैं, यही कारण है कि भविष्यद्वक्ता को पुस्तक को खाना था, यही कारण है कि उसे हस्तलेख को खाना था, उसे उस वचन को परिवर्तित करना था उस युग में। आप समझे? ध्यान दें, हनोक छाया में परमेश्वर परावर्तक था। जब परमेश्वर उसके द्वारा साथ था, उसने उसका रूपांतरण कर दिया, उसे उठा लिया। वो यांत्रिकी जो उसने परिवर्तित की, आत्मा से गतिशील हो गया और उसे ऊपर उठा लिया। वैसे ही एलिया के दिनों में, एलिया अपनी हड्डियों में भी, जहां वो परावर्तन अपनी देह में परमेश्वर का परावर्तक को प्रकट किया, परमेश्वर के वचन को, उन्होंने उस पर मृत मनुष्य को रखा, वो फिर से जीवन की चिंगारी में आ गया। हम उसका मांस और हड्डी हैं, जब तक हम मसीह की दुल्हन हैं। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? ठीक है, वो हमारे लिए मरा, हम स्वयं के लिए मर गए और उसके नाम में गड़ गए, जो हम करेंगे अब और संसार के नहीं, परंतु उसमें जिसके दोनों परिवार स्वर्ग में यीशु मसीह के नाम के। ये इफिसियों 1:21, क्योंकि दोनों स्वर्ग, स्वर्ग का परिवार, स्वर्ग के परिवार का क्या नाम है? यीशु। पृथ्वी के परिवार का क्या नाम है? भाई, ये परमेश्वर का घर है जहाँ उसका लहू है। क्या ठीक बात है? यही द्वार है, यही फाटक है, यही स्थान है। उसने अपना नाम रखा है और वचन देहधारी हुआ और हमारे मध्य में डेरा किया। ये वचन परावर्तित हो रहा है और इस युग जिसमें आप रह रहे हैं चिंगारियां छोड़ रहा है। यही वो जो था, यही जो मूसा था, यही याकूब था, यही वे बाकी सब थे। परमेश्वर के वचन की चमक छोड़ रहे थे, परावर्तक, जिससे परमेश्वर स्वयं को परिवर्तित कर रहा था और परमेश्वर के सिद्ध रूप में आ गया यीशु मसीह। परमेश्वर का सर्वोत्तम प्रहार किया गया कि बाकियों को उन्हें दुल्हन होने के लिए ले ले, जो उसको परावर्तित कर रहे थे। मूसा उसमें था, यहोशू उसमें था, और यदि आप उसमें हैं, संसार की सृष्टि से पहले आप उसमें थे, परमेश्वर का परिवार, आपने उसके साथ दुख उठाया, आप उसके संग मर गए, आप उसके साथ क्रूस पर गए, आप उसके साथ जी उठे, और अब भी आप उसके साथ हैं, स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, युग के संदेश को संसार पर परिवर्तित कर रहे हैं, संसार की ज्योति। तुम संसार की ज्योति हो, परंतु यदि ये नामधारी संस्था पैमाने की टोकरी से छिपा दी जाए तो वे कैसे से देखने वाले हैं? क्योंकि आपकी रीतियों ने ज्योति को प्रभावहीन बना दिया। यत्न करने के द्वारा आपके संस्था संबंधी ज्योति को कलीसिया से दूर रखते हैं। आप भीतर नहीं जाएंगे, न ही उन्हें जाने देंगे। आमीन। हम थोड़ा रुकें। ओ, यहाँ मेरे पास बहुत हैं। हम चलते रह सकते हैं। ओ, हमारे पास 5 मिनट हैं। आप देखते हैं कि द्वार कौन है। परमेश्वर ने अपना नाम कहाँ रखा है? यीशु में। आप कैसे उसके नाम में आते हैं? आप उसके अंदर कैसे आते हैं? उसमें बपतिस्मा लेने के द्वारा। कैसे? पानी के द्वारा, आत्मा के द्वारा। एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। जल का बपतिस्मा आपको लोगों की संगति में रखता है, ताकि आप पहचान जाएं कि आपने मसीह को स्वीकार किया है। यही सत्य है। परंतु इसकी आत्मा का बपतिस्मा, मैं आपके ऊपर यीशु के नाम को पुकार सकता हूँ और आपको बपतिस्मा दूं। ये इसको इस प्रकार नहीं बनाता। परंतु एक बार जब पवित्र आत्मा वास्तव में मूल वचन आता है आपके अंदर, यीशु वचन, तब भाई संदेश आपके लिए कोई भेद नहीं है। भाई आप ये जानते हैं, ये आपके सामने ज्वलंत हो जाता है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आमीन। प्रिय परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इन लोगों को चंगा करेंगे प्रभु, और प्रत्येक को स्वस्थ करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ओ प्रेम, ओ विश्वास से उस धार को देखता हूँ जो तेरे घावों से बहकर निकला, उस सर्वोत्तम से छुड़ाने वाला प्रेम मेरा विषय है। आप कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर प्रेम है। वो जो प्रेम करता है परमेश्वर से है। दिव्य पवित्र प्रेम, गंदा प्रेम नहीं, स्वच्छ शुद्ध पवित्र प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। वचन, तेरी व्यवस्था को मैंने अपने हृदय में छुपा रखा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। ओह, दाऊद चिल्लाया, क्या ये अद्भुत नहीं है? क्या आप उससे प्रेम नहीं करते? अब एक मार्ग है, शुद्ध पवित्र मार्ग, केवल एक स्थान जहां परमेश्वर आपसे मिल सकता है। इसलिए नहीं क्योंकि आप कहते हैं परमेश्वर अब मैं अच्छा मेथोडिस्ट हूँ, मैं अच्छा बैप्टिस्ट हूँ, मैं अच्छा पेंटिकॉस्ट हूँ। नहीं, क्योंकि आप यीशु में हैं, वचन में, वचन का भाग जो आज प्रकट हो रहा है, ये आज का संदेश है, ना कि लूथर का, वेसली का, पेंटिकॉस्टल का। परंतु आपका यीशु परावर्तन जो इसमें आ गया है, आप उसमें वापस नहीं जा सकते। ये तो आपकी पवित्र रोटी में खमीर मिलाना है। मनुष्य हर उस वचन से जिएगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है अपने समय में। ओ प्रभु यीशुआ, वो महान चोटी के पत्थर, देखिए सामने रखा है उन लूथरन की धूल जो पीछे शहीद होकर मर गए। उन मेथोडिस्टों को देखें, वे पेंटिकॉस्टल आदि अब आ रहे हैं, वो वास्तविक वंश जो आता है। तुम असेंबलीज ऑफ गॉड जाकर संस्थागत हो गए, जबकि उसी चीज से परमेश्वर तुम्हें निकाल कर लाया था, तुम सुअर की नहीं वापस पलट गए कीचड़ में। तुम वननेस यूनाइटेड, वो पुराने जेसी के पेंटिकॉस्टल असेंबलीज ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो अश्वेत और स्वयं को अलगाववाद के कारण अलग कर लिया। तुमने ये किया और फिर मिल गए और इसे यूनाइटेड कहा, और फिर संस्थागत हो गए और संस्थाओं में विवाद करते हो जैसे कुत्ता उल्टी की ओर घूमता है। यदि उल्टी पहली बार कुत्ते को बीमार करती, क्या ये उसे फिर से बीमार करेगी? अपनी खुराक को बदल लें, नामधारी से वचन पर आ जाएं और मसीह के जीवित रहें। आपके लिए लज्जा है। I've got a father over yonder. I've मेरा पिता वहाँ पर है, मेरा पिता वहाँ पर है, मेरा पिता वहाँ पर है, उस दूसरे किनारे पर। किसी चमकदार दिन में जाऊंगा और उसे देखूंगा, किसी चमकदार दिन में जाऊंगा और उसे देखूंगा, किसी चमकदार दिन में जाऊंगा और उसे देखूंगा, उस दूसरे किनारे पर। ओ क्या वो प्रसन्नता वाली भेंट ना होगी, क्या नहीं होगी। वचन वचन के पास जाता है, भेंट जब दुल्हन जाती है ऊपर वचन दर वचन। प्रसन्नता वाली भेंट उस दूसरे किनारे पर। उस चमकदार दिन संभव है कल हो, वो चमकदार दिन संभव है कल हो, वो चमकदार दिन संभव है कल हो, उस दूसरे किनारे पर। आप कहते हैं आपका ये अर्थ है भाई बर्नम? जी हाँ श्रीमान, जब लूथरन उस युग के वेस्ली, उनके युग के पेंतिकॉस्टल, उनके युग के सच्चे वाले, ना कि नामधारी पेंतिकॉस्टल, वे जिन्होंने खमीर मिलाया उनके नामधारियों में मर गए, परंतु ये सच्चा वचन आगे बढ़ता गया। देखा, जैसे कि यीशु ने कहा, उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, और मैं तुम में हूँ और तुम मुझ में हो, ये सारा वचन। ओ क्या ये आनंद से भरी भेंट ना होगी जब उसके पुत्र उसके फाटक में जमा होंगे। क्या वो आनंद वाली भेंट ना होगी उस दूसरे किनारे पर। अब कलीसिया जिसे अब हम सिखा रहे हैं, परंतु स्मरण रहे, जब आप यहाँ से स्थान छोड़ते हैं और भूसी से बाहर निकलना आरंभ करते हैं, आप बीज में प्रवेश कर रहे हैं, परंतु पुत्र की उपस्थिति में बने रहें। जो मैंने कहा उसे ना मिलाएं, जो मैंने कहा उसे ना ले जाएं, क्योंकि मैं सत्य बोलता हूँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जैसा कि पिता ने मुझे दिया है, समझे, इसमें ना मिलाएं, वही करें जो मैंने कहा। इसमें बात यह है, बस लोगों को बताएं कि आकर प्रभु यीशु को खोजें और स्वयं को ठीक उसकी उपस्थिति में रखें, बस उससे प्रेम करें। ओ प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मेरे हृदय को नम्र करें और सारी गंदगी संसार का प्रेम निकाल दें, और मैं पवित्र जीवन जीऊं आपके सामने इस समय के संसार में। क्या हम अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएंगे? अब हम देखें, क्या आपने प्रार्थना के विसर्जन के लिए चुना है या फिर मैं करूंगा? वास्तव में श्रद्धा में रहें। प्रिय परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें हमारा आत्मिक भोजन दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, वचन के विटामिन परमेश्वर के पुत्रों को बढ़ाते हैं, ये किसी और प्रकार के चरित्र पर प्रभाव नहीं डालते, केवल परमेश्वर के पुत्र पुत्रियों पर। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि इसमें लाभ होगा कि हम केवल आपका धन्यवाद ही नहीं करेंगे, हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं, परंतु हम इसके लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करने का यत्न करेंगे, प्रेम के द्वारा, कि लोगों को अपने परमेश्वर पर विश्वास के लिए उत्साहित करें। भटके हुए पापी स्त्रियां, पुरुष, लड़के और लड़कियां इस युग में, प्रभु देखते हुए मस्तिष्क की दशा और अधीरता का युग जिसमें हम हैं, उनके मस्तिष्क को आपसे बाहर कर रहा है कि जो पवित्र शास्त्र ने कहा और प्रतिज्ञा की उसे पूरा कर रहा है। बड़ी भयंकर चीजें पृथ्वी पर आएंगी, टिड्डी जैसे उन स्त्रियों पर जिन्होंने अपने बाल काटे हैं, उनके बाल स्त्रियों के से लंबे होंगे, और विभिन्न विकराल दृश्य जो वे देखने योग्य होंगे, प्रभु उस मस्तिष्क की दशा में जिसमें वे होंगे, और फिर चट्टानों के लिए चिल्लाएंगे और पहाड़ों के लिए, स्त्रियां जो कुत्ते और बिल्लियों की देखभाल करती होंगी, ना कि आपको आदर देने के लिए, बालकों का पोषण, वे जिनको आपने बालक दिए और उन्होंने गर्भ धारण किया, उन्हें सड़क पर फेंक दिया जैसे उन्होंने चाहा। कोई आश्चर्य नहीं, आपने कहा प्रभु जब आप क्रूस पर जा रहे थे, तब वे चट्टानों और पहाड़ों के लिए चिल्लाएंगे कि उन पर गिर पड़े। हम हर दूसरी चीज को देख रहे हैं जो इस समय चल रही है, हम देखते हैं कि वचन प्रमाणित और सिद्ध हो रहा है, और प्रभु जैसा कि हम देखते हैं आप अपनी आंखों से प्रकट हो रही है, किसी दिन स्वर्गारोहण होगा और हम वचन का प्रकटीकरण देखेंगे, क्योंकि मनुष्य का पुत्र महिमा के बादलों पर आएगा अपने पवित्र दूतों के साथ, और हम उसे मिलने को हवा में उठा लिए जाएंगे, तब ये होगा। अब हम इसे सुनते हैं, तब हम इसे अपनी आंखों से देखेंगे। प्रभु, हम अपने आप को उसमें पाएं, केवल दिया गया स्थान, और वो बलिदान है। हम उसे लाते हैं जो हमने यीशु मसीह के विषय में, जो परमेश्वर के भवन में सुना, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा यीशु मसीह के नाम में होते हुए, और वहाँ हमारा बलिदान स्वीकार हुआ और हम परिवार में लाए गए, क्योंकि अब भी संसार में भटक रहे हैं। हम संसार की सृष्टि से पहले परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां थे। पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद हो। ओ, कैसे कोई किसी चीज पर वापस पलट सकता है, जबकि उन्होंने सत्य पा लिया है कि परमेश्वर ने उन्हें जगत में से चुन लिया है। जिस दिन मैं बचाया गया, लाखों नष्ट हुए। ओ मरते हुए मेमने, मैं कैसे कभी आपका धन्यवाद दे सकता हूँ? मेरा हृदय आपके लिए कभी श्रद्धा से आपके सामने भरेगा। प्रिय परमेश्वर, मेरी सहायता करें कि सच्चा जीवन बिताऊं। मेरे लोगों की सहायता करें कि सत्य जीवन बिताएं। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, प्रत्येक के लिए कि आप करेंगे परमेश्वर। कैसे भी मैं नहीं जान पाऊंगा कि कैसे मैं नहीं जानता कैसे आपसे मांगूं प्रभु, और हो सकता है मैं सही प्रकार से ना मांग रहा हूं, परंतु आप मेरी अज्ञानता को क्षमा करें प्रभु, और बस मेरे हृदय को देखें। मैं प्रार्थना करता हूं कि इनमें से एक भी नष्ट ना हो पिता। मैं इनमें से प्रत्येक के लिए आपके लिए दावा करता हूं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और यदि आप उसे प्रेम करते हैं, तो आप एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे से हाथ मिलाएं। Sir!